Perek Shta. So pichle slokon mein humne suna tha Bhagwan keh rahe the ki ये प्रकृति जो है वो मेरे इशारे पे काम करती है, मेरी अधिअक्ष मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। अर्थात प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती अपने आप से। प्रकृति जड़ वस्तु है और अगर दुर्गा देवी को उसका अधिष्ठात्री माना जाए, क्योंकि दुर्ग शब्द का अर्थ होता है किला, दुर्ग अब क्या बोलते हैं फोर्ट राइट, किला, और वो किले को संभालने वाले जो अथॉरिटी होती है, जो जेल जेलर होते हैं ना, तो वो अथॉरिटी दुर्गा देवी, उनकी इच्छा के बिना उस किले से बाहर नहीं जा सकता कोई, क्योंकि वो पूरा सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम उनके अंडर में काम करता है किले का। अभी ये दुर्गा देवी जो है ये भगवान की शक्ति की छाया मात्र है। छाए वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, और ये भगवान की शक्तियों का एक्सपांसन है। आप समझ रहे, एक्सपांसन का एक्सपांसन का एक्सपांसन, अर्थात विस्तार, भगवान का विस्तार, उस विस्तार का दूसरा विस्तार, उस विस्तार में से तीसरा विस्तार, इस तरह के विस्तार होते हैं, तब जाके दुर्गा देवी का स्थान आता है। और यही दुर्गा देवी व्यक्ति एक ही है, लेकिन एक ही दुर्गा देवी कभी अंतरंग शक्ति के रूप में काम करती है और कभी बहिरंग शक्ति के रूप में काम करती है। सेम पर्सन, अलग अलग लोग नहीं है। और अंतरंग शक्ति जो है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल प्रॉपर देते, जैसे ये बिजली आ रही है यहाँ पर, तो हम इसको ठंडी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, गर्मी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, दोनों रूप में उपयोग हो सकता है। इससे से भगवान की अपनी शक्ति, जब भगवान चाहते हैं तब वो अंतरंग शक्ति के रूप में काम करती है। यशोदा माता के ऊपर जो काम करती है अंतरंग शक्ति है, क्योंकि वहां पर तो बहिरंग शक्ति को परमिशन ही नहीं है एंट्री का, अंदर जा ही नहीं सकती वृंदावन धाम में। और हम पर जो कार्य करती है वो बहिरंग शक्ति है। भूलना तो हम दोनों का काम है, कृष्ण भी, यशोदा माता भी कृष्ण को भगवान के रूप में भूल जाते हैं और हम भी कृष्ण को भगवान के रूप में भूलते हैं, लेकिन उनका भूलना और हमारा भूलने में अंतर है। हमारा भूलना अज्ञानता के कारण है और उनका भूलना भगवान की इच्छा से हो रहा है। इसलिए ये दुर्गा शक्ति जो हम पर कार्य कर रही है, भगवान की जो माया है, इसको लांघना तो इम्पॉसिबल, इसको कोई पार नहीं कर सकता दुर्गा शक्ति को। ये तो स्वाभाविक है, बड़े बड़े ऋषि मुनि विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या करके भी मेनका से आकर्षित हो गए, इसको कोई पार नहीं कर सकता। बड़े बड़े तपस्वी ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, ये सभी भगवान की माया शक्ति के सामने विवश हो जाते, भ्रमित करने वाली है, ज्ञान को हर लेने वाली है, भ्रमित करने वाली। लेकिन पहले भगवान एक बार सातवें अध्याय में बताया था कि जो मेरी शरण में आता है उस व्यक्ति को माया छूती नहीं है। फिर एक ही तरीका है माया से बचने का, मेरी शरण में। क्यों? क्योंकि माया अध्यक्षेन प्रकृति, मैं हूं इसका स्वामी, ये प्रकृति मेरे इशारे पे काम करती है। मैं इसको मना कर दिया कि इसको छू, मेरे भक्त को छूना मत, तो कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उनका काम पुलिस का काम, पुलिस वाले लोग। अब पुलिस वाला ऐसा नहीं कि पुलिस वाला सब बेकार होते हैं। पुलिस वाले केवल वही कार्य करते हैं जो उनके अथॉरिटी ने उनको बोला है। आइडियली ऐसा ही कार्य करते। तो पुलिस वाले को अगर एक बार बोल दिया किसी ने, कमिश्नर ने या होम मिनिस्टर ने किसी ने बोल दिया, ये अपना आदमी है, इसको परेशान मत करना कहीं पर भी, उनको पूरी छूट होनी चाहिए। अभी कुछ लास्ट एक साल पहले हम गए थे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में यात्रा था हमारे गुरु जी का, तो यात्रा में वहां जगन्नाथपुरी में कुछ रास्ते ऐसे है कि सिंगल रोड है, तो वहां पर वन वे होता है और फोर व्हीलर अलाउ नहीं होता है। वॉकिंग कर सकते हो आप, टू व्हीलर लेके जा सकते हो, फोर व्हीलर अलाउ नहीं होता। अगर आपको फोर व्हीलर के साथ जाना है तो पूरा घूम घूम के जाना पड़ता है जगन्नाथपुरी में, और समुद्र से होकर बीच होकर के पूरा घूमते 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 काफी 5 मिनट का रास्ता हो, लेकिन फोर व्हीलर होता है तो आधा घंटा लगता है, इतना घूमना पड़ता है रास्ते सब में। तो मैं जैसे ऐसा सोच रहा था कि कहां से, और गुरु जी का रूम था काफी दूर, करीब 3-4 किलोमीटर दूर होगा, और जहां पर लेक्चर का पंडाल बनाया था वो समुद्र के तट पे था। तो अभी घूमते घूमते तो अचानक से हम ऐसे गुजर रहे थे सिंगल रोड पे मार्केट में से, और अचानक से वो सायरन बज रही है कि मुझे लगा या तो पुलिस वाला होगा या एम्बुलेंस होगी, तो पुलिस वाला होगा या एम्बुलेंस होगी, तो दो गाड़ी आई सायरन वाली और उसमें महाराज बैठे हुए थे, पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी। तो मैंने उनको पूछा ये कैसे हुआ उनके सेक्रेटरी को, तो हमारे एक भक्त है जो आर्मी वाले वो भुवनेश्वर में, तो उन्होंने पुलिस वालों को बोल दिया था कि हमारे इसको के बड़े वरिष्ठ नेता है तो इनको आप ये सुविधा दो। तो पुलिस वाला खुश हो गया, पुलिस वाला वाले कोई आप चिंता मत करो, हम पूरा सिक्योरिटी रखेंगे, महाराज के साथ हमेशा ऑल टाइम रहेगा, और महाराज पुलिस की गाड़ी में ही घूमेंगे और पूरा एस्कॉर्ट उनको मिलेगा, उनको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भी पुलिस ने बोल दिया तो भी कहीं पर भी जा सकते हो आप, भगवान ने बोल दिया यू नो, प्रकृति को बोल दिया इनको छूना मत, इनको रिस्पेक्ट करो, वैष्णव है भक्त है, तो फिर वो कुछ नहीं करेंगे, माया कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये बात मूर्ख लोग नहीं समझ पाते कि भगवान इस प्रकृति को समझ, इसलिए फिर भगवान ने कहा अवजानन्ति माम मूढ़ा। जो मूर्ख लोग होते हैं, मूढ़ होते हैं, वो मेरी इस परम भाव को नहीं समझ सकते, वो सोचते हैं कि मानुषिम तनुमाश्रित, जब मैं प्रकट होता हूं मैं अवतार लेता हूं तो मनुष्य शरीर प्राप्त करता हूं, ऐसा सोचते हैं। कृष्ण एक साधारण मनुष्य है, युग पुरुष है, क्रांतिकारी है, ऐसा सब मानते हैं लोग, रेवोल्यूशनरी है वो लोग, ऐसा सोचते हैं कि अर्जुन तो युद्ध करना ही नहीं चाहता था, लेकिन कृष्ण ऐसे तीखे वचन बोल करके ऐसा रेवोल्यूशनरी भाषण दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध पर आधे घंटे के पौने घंटे में, कि अगर अर्जुन की जगह पर और कोई होता तो वो भी धनुष उठा लेगा। तो इस तरह से कृष्ण भी इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। कुछ लोग भगवद गीता को एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर का अर्थ होता है क्या बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट को, कट्टरवादी साहित्य, कट्टरवाद होता है कट्टरवाद, तो कट्टरवादी साहित्य। रशिया में केस किया था किसी ने कुछ साल पहले, भगवद गीता कट्टरवादी साहित्य, तो उसकी चर्चा अपने भारत के पार्लियामेंट में हुई थी, और मुझे याद है मैं उस समय मैं देखा था लाइव वीडियो, भारत के पार्लियामेंट में इस बात की चर्चा हुई थी और पूरे पार्लियामेंट में गीता गीता हो गया था, भारत के पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में भगवद गीता, और ये जो लालू थे उस समय पार्लियामेंट में, अभी तो अंदर है लेकिन वो लालू थे उस समय, तो लालू भगवद गीता को, हालांकि वो पॉलिटिकल वे से बन रहा है व्हाटएवर, लेकिन बोलता है कृष्णा हमारे कुल के हैं, यादव कुल के हैं, इसलिए भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को एक्सट्रीमिस्ट नहीं बोल सकते। सो इट वाज अ ग्रेट फेवर ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता का पूरी लोकसभा में बहुत ज्यादा फेवर हुई थी, सो इट वाज वेरी गुड दैट एटलीस्ट सम अप्रिसिएशन दे हैड फॉर भगवद गीता। सो मनुष्य तन्माश्रिता, ये मूर्ख लोग ये जानते नहीं है कि भगवान के द्वारा जो शरीर प्रकृति, हमने ब्रह्मा जी का भी उदाहरण दिया था ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए तो ये साधारण मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो, ब्रह्मा जी भी मूर्ख बन गए भगवान के सामने। फोन दे दो ना अंदर। सो अब सोचिए, ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए तो एक साधारण मनुष्य तो आकर्षित होगा ही। इसका अर्थ ये होता है कि जब तक भगवान किसी व्यक्ति पर कृपा नहीं करते या किसी वैष्णव की कृपा किसी पर नहीं होती, तब तक कोई व्यक्ति भगवान को अपने असली स्वरूप में पहचान ही नहीं पाता। चाहे कोई कितना भी दावा कर ले, बड़े बड़े बापू स्वामी जोगी भोगी या कितने भी बड़े बड़े संप्रदाय खोल कर रखे, मठ बनाए हैं, लाखों फॉलोअर्स है, ये लोग भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे तो ये लोग क्या समझ पाएंगे। ब्रह्मा जी इसलिए बोलते हैं कि जिसको अगर जो कोई ऐसा मानता है कि वो लोग भगवान को समझते हैं तो उनको धन्यवाद, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा ये बोल रहा हूं कि मैं भगवान को नहीं समझ पा रहा, इसका अर्थ होता है कि जो कोई भी बोल रहा है कि मैं भगवान को समझ रहा हूं पूर्ण रूप से, इसका अर्थ होता है कि वो कम बुद्धि वाला है, इसमें दिमाग नहीं है। सो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाते तो मायावादी लोग तो समझ ही नहीं सकते। इसलिए बार बार मायावादी लोग ये कहते हैं कि भगवान मनुष्य है, भगवान मनुष्य है, भगवान तो एक्चुअली अंदर बैठा हुआ आत्मा है, वो ये शरीर धारण करने वाला है, वो तो कोई कृष्ण का शरीर है, कृष्ण का अंदर जो है वो भगवान है, कृष्ण के अंदर और कृष्ण के बाहर में कोई फर्क नहीं है, कृष्ण का अंदर बाहर एक ही है। हमारे अंदर में और हमारे बाहर में फर्क है क्योंकि हम बद्ध जीव है, हमारा शरीर चमड़े का बना हुआ है, ये पंच महाभूत का बना हुआ है हमारे शरीर, हमारे शरीर में विकार है, हमारे शरीर में पसीना होता है, हमारे शरीर में से अगर आप पूरा दिन के अंत में आपके शरीर में से बदबू आने लगती है, क्यों? क्योंकि ये शरीर पंच महाभूत का बना हुआ है। तो भगवान के शरीर में ऐसा नहीं है, भगवान के शरीर में हर एक वस्तु दिव्य है। मायावादी लोग इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि शरीर पंचमहाभूत अष्टदा भिन्ना प्रकृति अष्टदा, आठ वस्तु से प्रकृति बनी है, भूमि राप मनोलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार, ये आठ वस्तु है जिसकी चर्चा हुई थी आगे सातवें अध्याय। तो ये आठ वस्तुओं से प्रकृति बनी है, हमारा शरीर इससे बना हुआ है, और हमारा आत्मा किस कौन सा आत्मा का लक्षण कैसा है, वो कैसे बना हुआ है, सच्चिदानंद, शाश्वत है, ज्ञानमय है, आनंदमय है, ये सच्चिदानंद। तो आत्मा का जो स्वरूप है वो भगवान के शरीर का स्वरूप है, भगवान का शरीर शाश्वत है, भगवान का जो शरीर है वो पूर्ण रूप से ज्ञानवान है, अर्थात वो सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम नहीं जान पाते। वो तेरहवें दिन आएगा कि भगवान पूर्ण जानने वाले हैं और मैं लिमिटेड हूं, मेरे एक प्रेमविलास प्रभु के अगर हाथ में पेन हो रहा है तो वो मैं नहीं समझ सकता क्योंकि मेरा शरीर, मेरा ज्ञान मेरे शरीर तक सीमित है। सो इस तरह से भगवान पूर्ण ज्ञाता है और भगवान पूर्ण आनंदमय है। हमारा ये शरीर कष्ट देने वाला है, ये बार बार रुला है आपको, ये शरीर कष्ट देने वाला है लेकिन भगवान का शरीर आनंदमय है। तो भगवान की शरीर को मायावादी लोग नहीं समझ पाते, इसलिए बारहवें श्लोक से फिर भगवान बताते उन लोग का क्या होता है, क्या होता है इन प्रकार के लोगों का, वो पढ़ी आगे बारहवें श्लोक।
जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा,
आई थिंक इट्स 13
12
ओके या 11 प्लीज गो एंड कंटिन्यू 12।
जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं।
हाँ, मोह का अर्थ होता है बैफल्ड, निष्फल, कुछ नहीं मिलता। भगवान यहाँ पर साफ साफ बता दिया, क्लियर कट, कोई इधर उधर नहीं। मोग आशा, आशा मोग आशा शब्द जनरली कर्म कांडी लोग के लिए, मोग आशा ज्ञानियों के लिए, मोग कर्मणा वो कर्मयोग के लिए, सॉरी मोग आशा इस पर अष्टांग योगी, मोग कर्मणा एंड मोग ज्ञान है वो ज्ञानियों के लिए। तो जो लोग अष्टांग योग की उपासना करते हैं और इस कोई लोग ब्रह्म की आराधना करते हैं, जो लोग भौतिक इच्छाओं के कारण कर्म कांड में लुप्ते हैं, ये सारे अगर कृष्ण के शरीर को मिथ्या मानते हैं, कृष्ण के शरीर को भौतिक मानते हैं अवजानंती माम वाले, इस सबकी तीनों की, कर्मियों की, ज्ञानियों की और योगियों की, ये तीनों की जो सक्सेस है, उनका मार्ग में जो सफलता है वो नहीं मिलती, वो निष्फल हो जाते हैं। कर्मी भी निष्फल हो जाता है, ज्ञानी भी निष्फल हो जाता है, योगी भी निष्फल हो जाता है। क्यों निष्फल हो जाता है? क्योंकि भगवान को एक असाधारण मनुष्य मानते हैं, भगवान को साधारण मनुष्य मानने वाला कृष्ण का अपराधी बन जाता है, इसलिए उनको कोई सहाय नहीं करता, नोबडी हेल्प्स देम। तो इसलिए प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दिए थे कि महात्मा गांधी वो इतना फेमस हो गया था कि बाद में प्रभुपाद इसको मोग कर्मणा के लिए बता रहे कि मोग कर्मणा कब होता है कि व्यक्ति कितना भी मेहनत करे अंत में उसको निराशा प्राप्त होती है।
ऊपर उसके ऊपर
खत्म ही नहीं हो रहा काम भी। हाँ बोल रहे, इज देयर एनी मेडिसिन विदाउट एंटीबायोटिक विच कैन हेल्प कॉफी? एलर्जिक?
एंटी एलर्जिक है, थोड़ा जो शूटिंग टाइप का ही होते हैं ना, वो थ्रोट एक्चुअली फरेंजाइटिस है, यहाँ से ही आती है, नीचे इन्फेक्शन नहीं।
दिस इज नॉट राइट,
थोड़ा शहद जो है ना वो कहते हैं, शहद को थोड़ा लेके धीरे धीरे से थोड़ा सा।
प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए कि लोग बाद में कुछ समय के पश्चात महात्मा गांधी की जाय, महात्मा गांधी की जाय, इतनी नारेबाजी होती थी, इतना हल्ला होता था कि कान बंद करने पड़ते थे, इतने लोग इकट्ठा हो जाते, वो बिकम सेलिब्रिटी बन गए थे पूरे इंडिया में, राइट, पूरे वर्ल्ड में बन गए थे। तो ये नारेबाजी के कारण कई गरीब लोग सो नहीं पाते थे, महात्मा गांधी को लोग इतना पसंद करते थे। जैसे ही पता पड़ता था कि गांधी इस मार्ग पे आने वाले हैं, तो लाखों लोग इकट्ठा हो जाते थे। आई यूज टू आस्क माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी को मैं पूछता रहता था हमेशा कि, क्योंकि उन्होंने तो देखा हुआ है ये सब, तो मैं उनको पूछता कि तुम्हारे समय की बातें बताओ, गांधी कैसे काम करते थे, किस तरह से लोग इकट्ठा होते थे, ऐसा सब बता दो। सो सी वॉज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि उनको पता पड़ना चाहिए लोगों को कि इस मार्ग से गांधी आने वाले, तो लाखों लोग इकट्ठा हो जाते थे। सो गांधी जी खुद परेशान हो गए बाद में, महात्मा गांधी खुद परेशान हो गए कि इतना हल्ला, इतना परेशानी, आई एम सो डिस्गस्टेड, ही सेड कि मैं इतना डिस्गस्टेड हूं, आई विश टू डाई। ये महात्मा, ये गांधी का शब्द है, गांधी बोले थे कि मैं इतना दुखी, इतना परेशान, इतना हताश निराश हो गया हूँ कि अब मुझे मृत्यु चाहिए। हालांकि उन्होंने आजादी दिलवाई थी भारत को अंग्रेजों से, वॉट एवर सो कॉल्ड, लेकिन खुद निराश रहते थे। और ये बात प्रभुपाद ने उनको पहले बताया था लेटर लिख करके कि देखो अगर तुम ये बात मान लो, दिस इज राइट अपॉर्चुनिटी, लोग तुम्हारी बात को मानते हैं, पूरा देश तुम्हारी बात को मान रहा है आज, इन लोग को भक्ति मार्ग में इसको जोड़ने का ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर ये कार्य अगर तुम कर दोगे तो एंटायर यू नो गुरु परंपरा विल ब्लेस यू, इतना महान लाभ मिलना उसको। समझ ही नहीं पाए, ऐसा सुनने में आया था कि प्रभुपाद का लेटर गांधी तक पहुंचा ही नहीं,
पहुंचने ही नहीं दिया गया।
हाँ पहुंचने ही नहीं दिया गया।
जोड़ना चाहता हूँ, ये शुरू की जो टेक्स्ट बुक्स थी हमारे उत्तर प्रदेश में, उस एक टेक्स्ट बुक में एक गांधी जी के ऊपर एक श्लोक थे, अभी अभी आपने कहा तो मुझे याद आ गया, उसके अंदर ये शायद नाइन्थ में या टेंथ में टेक्स्ट बुक, संस्कृत की टेक्स्ट बुक में था, उसमें तो ये लिखा था कि तम बंदे मनोदेह धारणम अहम गांधाख्य देवम परम, ऐसे करके ये सो कि उसके आगे दृष्टा दृष्टा जन्म भुवम निजाम निगड़िताम वैदेशिक बंध नहीं है चेतो दुवे तथा निद्रा में स प्राप्तवान। लास्ट में उसकी जो संपुट होता था वही था कि तम बंदे मनोदेह धारणम अहम गांधाख्य देवम परम, मतलब गांधी जी को परमदेव बना दिया था लोगों ने।
हाँ,
अब हम लोग टेक्स्ट में पढ़ते थे।
यस,
वो भी याद आ गया मुझे, मैंने कहा yes. पुरानी चीज याद आ गई।
लेकिन बाद में उनकी हत्या हो गई।
हाँ,
उनकी हत्या हो गई, और जिस प्रभुपाद ने ये भविष्यवाणी की थी, और लेटर है अपने पास, प्रभुपाद ने जो गांधी को लिखा था लेटर, वो है अपने पास। लेटर में प्रभुपाद ने लिखा था कि अगर अगर आप इस बात को सुनोगे नहीं, मेरी जो एडवाइस है उसको सुनोगे नहीं, और इसी तरह से अगर आप कार्य करते रहोगे, चलते रहेंगे, इसी प्रकार से काम करोगे, तो आपका अंत बड़ा दुखमय आएगा। तो
पांच महीने तो
जिंदा
रहे, उसके बाद
समझा के बाद सो मोह कर्मणा, इतना अच्छा काम करने के बाद भी निराशा। आज भी लोग, कुछ लोग गांधी को गाली देते हैं आज भी, क्यों कह देते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि क्या 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 गलतियां की थी गांधी ने, और इसका परिणाम आज पूरी पीढ़ियों तक चलते आए उसका परिणाम। मोघ ज्ञाना का अर्थ होता है कि आप कितना भी रिसर्च वर्क करो लेकिन कृष्ण को भगवान है ऐसा समझ नहीं पाते, तो आपका सारा रिसर्च बेकार जाता है, यूजलेस लेबर। इतना सब मेहनत करने के पश्चात भी कोई काम में नहीं आता। सो मोघ ज्ञाना, मोघ आशा, वो अष्टांग योगी या सारी उनकी इच्छा आशा है सब व्यर्थ हो जाती है।
वो जैसे आपने बताया कि भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं तो ये परिणाम आता है, सिमिलरली गुरु को भी साधारण मनुष्य समझने में से भी ऐसा ही मतलब परिणाम
आएगा, क्योंकि भगवान की जितनी क्वालिटीज होती है वैसे ही क्वालिटीज गुरु की होती है, और गुरु को भी अगर कोई व्यक्ति साधारण मनुष्य समझता है तो आप उनके चरणों में अपराध कर रहे हैं, जैसे कृष्ण के चरणों में अपराध हो रहे हैं, वैसे उनको साधारण मनुष्य में। हो सकता है कि गुरु का वो आपके थर्ड मॉड्यूल में आता है गुरु की डिफरेंट कैटेगरीज, तो गुरु अलग अलग श्रेणी के हो सकते हैं, वैष्णव गुरु भी अलग अलग श्रेणी के हो सकते हैं, लेकिन शिष्य के लिए गुरु को कभी साधारण मनुष्य मानना ये अपराध है। गुरु चाहे गुरु के गुरु भाई के लिए वो शायद भगवान के समान पूज्य नहीं है, आप शिष्य के लिए, गुरु के गुरु भाई के लिए नहीं है, या गुरु के गुरुजन जो है परंपरा उन लोग के लिए एक दास है उनका, लेकिन शिष्य के लिए गुरु वही उसी भाव से उनको पूजना चाहिए भगवान के रूप में। ही ऑल्सो हैव द सेम मोगा सामोगा कर्मा मोग ज्ञान। सो ओके सो नेक्स्ट भगवान आगे कहते हैं, कौन सा श्लोक हमने पढ़ा?
12
पढ़ा, यस। लेकिन जो लोग भगवान को स्वीकार करते हैं उनके उनके विषय में क्या? ये लोग तो नहीं स्वीकार करते भगवान को, लेकिन जो लोग स्वीकार करते हैं उनके विषय में क्या? ये जो नहीं स्वीकार करते हैं उनके विषय में शास्त्र में लिखा है कि उनको देखो वहीं से पानी में डुबकी लगा देना चाहिए, कपड़े चेंज करने भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई गमछा ले लूं स्नान करने के लिए, नदी में स्नान करना है तो ऐसा इतना टाइम नहीं होता है। मायावादी को देखते हो अगर तो पहने कपड़े ही स्नान करना, ऐसा शास्त्र में बताया है। लेकिन हमें पता नहीं है ना कौन कहाँ से है, इसलिए भक्त भक्त जनरली कृपालु होता है, दयालु होता है। अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते तो आपको ऐसे माया जी मिलते हैं, बट व्हाट कैन बी डन, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। सो जो लोग नहीं स्वीकार करते, लेकिन जो स्वीकार करते हैं भगवान को, उनको क्या? नेक्स्ट श्लोक में पढ़िए।
ये पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं।
महात्मा, ये लोग महात्मा है। एक्चुअली महात्मा कोई राजनेता का नाम नहीं है, महात्मा कोई स्टैंप लगा करके महात्मा नहीं होता। किसी ने किसी व्यक्ति को हमारे पास्ट में हमारे देश के बड़े सम्माननीय राजनेता को महात्मा का पदवी दे दिया, लेकिन किसने दिया, किस आधार पे दिया? केवल किसी को महात्मा कहने से वो महात्मा थोड़ी बन जाता है। महात्मा के विषय का गुण यहाँ पर बताया है, महात्मा माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रित, वो भगवान की अंतरंग शक्ति के शरणागत होता है, आश्रित होता है, अर्थात वो स्वयं डायरेक्टेड बाय कृष्ण हिमसेल्फ। भगवान उसको गाइडेंस देते हैं कि कौन सा कार्य करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, वो पूर्ण रूप से डिवाइन नेचर दैवी प्रकृति के संरक्षण में कार्य करता है। दे आर फुली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं द महात्मा डज नॉट डाइवर्ट हिज अटेंशन टू एनीथिंग आउटसाइड कृष्णा, भजंती अनन्य मनसो। अनन्य मनसो, वो और किसी चीज में जाते नहीं। अनन्य का पहले बहुत बार उपयोग हुआ ना, पहले भी अनन्य शब्द का, तो अनन्य शब्द से फिर से यहाँ पर बताया कि भजंती अनन्य मनसो, अनन्य का अर्थ केवल कृष्ण। अर्थात नारद, ये ब्रह्मा शिव या अम्बा दुर्गा काली या आपके इंद्रचंद्र वरुण, ये सब की नहीं पूजा, राइट। फिर अनन्य शब्द का अर्थ ये भी होता है कि वो कर्मकांड अर्थात भौतिक इच्छा से भी नहीं आकर्षित होता है, क्योंकि अनन्य का अर्थ है वो डाइवर्ट नहीं होता है कहीं पर। अगर आज मैं कृष्ण का सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अभी 2 मिनट सेवा किया लेकिन बाद में मेरा मन आकर्षित हो गया किसी भौतिक चीज के प्रति, तो वो अनन्य भाव से नहीं, डाइवर्ट नहीं हो सकता, उसका माइंड स्टेडी रहता है, वो देवी प्रकृति मास्टर। कई बार हम भक्तों को कहते हैं कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि डिसीजन मेकिंग होता है ना, निर्णय लेना, तो निर्णय लेने में हमेशा भक्त लोग ऐसा सोचते हैं, या कोई भी हर एक व्यक्ति सोचता है, कोई मुझे ऐसा मिल जाए फुल टाइम आपके साथ ही रहता हो और वो आपका भूत वर्तमान भविष्य सब देख सकता हो और उनके हाथ में सारी शक्ति हो, ऐसा व्यक्ति अगर आपको डिसीजन मेकिंग के लिए मिल जाए, कभी भी कोई भी डिसीजन लेना है तो आप उसको पूछ के ले सकते हो, इसमें क्या करूं, उसमें क्या करूं, इसमें क्या करूं, और फिर वो डिसीजन 100% एक्यूरेटी आता है, क्योंकि इज अ पर्सन, पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो सब खुश हो जाएंगे, राइट। नहीं, लेकिन कृष्ण अगर आपके साथ होंगे तो आप दुखी नहीं होंगे,
फिर तो नहीं दुखी होंगे। हाँ। व्यक्ति मिल गया तो दुखी
होंगे, नहीं व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता ऐसा कि जो भूतकाल वर्तमान और भविष्य को जानने वाला हो, ऐसा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं आपको जिसमें सारी शक्तियां हो। लेकिन भगवान अगर आपके साथ निरंतर आपके साथ, हार्ट में नहीं, तो हार्ट में भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपके साथ में है और आपको गाइड करे, ओके डू दिस डू दैट डोंट डू दैट डू दिस, आप कितने खुश हो जाओगे।
अर्जुन बन जाएंगे,
यू विल बी वेरी हैप्पी। राइट नो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी शरण में रहता है उसको पूरा प्रोटेक्शन मैं देता हूँ, पूरा प्रोटेक्शन। तो जो भक्त इस तरह से निरंतर भगवान की शरण में होता है उसको बुद्धि कौन देता है? छोटे छोटे आपको लगता है कि ये भक्त कभी गलती क्यों नहीं करता है? जैसे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद के विषय में आप देखोगे प्रभुपाद की लाइफ में आप कितना भी छानबीन करो, कुछ भी करो, कहीं पर मिलेगा ही नहीं ऐसा कोई भी इंसिडेंट कि गलती किया हो। आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति गलती करे ही नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आप पूरा लाइफ छान मारो, कुछ नहीं मिलेगा आपको गलती के नाम पे। क्रोध, एक व्यक्ति आया था प्रभुपाद को उकसाने के लिए, गुस्सा किया, इतना परेशान किया प्रभुपाद को, इतना परेशान किया, लगा रहा एक घंटे तक लगातार प्रभुपाद को क्रोध दिलाने के लिए, बहुत प्रोवोक किया, बहुत प्रोवोक किया, कुछ नहीं हुआ, थक गया बाद में प्रभुपाद को गुस्सा दिलाते, फिर भी प्रभुपाद गुस्सा नहीं किया उसके ऊपर, तो फिर बाद में हार गया, बाद में कबूल भी एडमिट किया कि स्वामी जी मुझे क्षमा करना, मैं जानबूझ करके ये सब कर रहा था आपको गुस्सा दिलाने के लिए, लेकिन आपको गुस्सा आता ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद गुस्सा नहीं करते थे, प्रभुपाद गुस्सा किया था अपने शिष्य के ऊपर, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो कहने का तात्पर्य है कि जो दैवी प्रकृति के अंदर में रहते हैं, सो दे आर फुल्ली फोकस्ड ऑन कृष्णा एंड डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय कृष्णा, बिकॉज ही नोज परफेक्टली दैट कृष्णा इज ओरिजिनल पर्सन ऑफ गॉड, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सच ए महात्मा और ग्रेट सोल डेवलप्स थ्रू एसोसिएशन विद अदर महात्मास। ऐसा महात्मा, महात्मा कैसे बनता है? दूसरे महात्माओं की संग करके, एसोसिएशन करके। प्योर डिवोटीज आर नॉट इवन अट्रैक्टेड बाय कृष्णा'स अदर फीचर्स सच एज द फोर आर्म महाविष्णु, दे आर सिंपली अट्रैक्टेड टू द बाय द टू आर्म फॉर्म ऑफ कृष्णा। चार हाथ वाले से भी आकर्षित नहीं होते, अनन्य मनसो बोला है यहाँ पर। आपको लगा चार हाथ वाला दो हाथ वाले में क्या अंतर है? कई बार कुछ भक्त पूछते हैं ये चार हाथ वाले दो हाथ वाले का क्या चक्कर है, तो मैं उनको सब हमेशा एक ही उत्तर देता हूँ, सब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं। चार हाथ वाला भी एक है, दो हाथ वाला भी वही एक ही है सब, क्योंकि ये चार हाथ वाले और दो हाथ वाले का डिस्क्रिमिनेट करना ये उसकी श्रद्धा देख के करना पड़ता है सामने वाले की, कि वो उसके श्रद्धा कितनी कमजोर है या कितनी पक्की। अगर वो समझ सकता है फिर समझेगा कि कृष्ण परमेश्वर है। अब साउथ इंडिया में जाकर के इस बात को छेड़ दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां पर लोग चार हाथ वाले को ज्यादा मानते हैं, नारायण को मानते हैं। सो वो लोग कृष्ण को छोड़ करके नारायण के पास भी नहीं जाते, तो डोंट गो टू नारायण ही बना। सो मैंने वो कथा एक बार आपको शायद बताया होगा पहले, वो गोवर्धन के पास जो गांव में बैठा का बताया था मैंने आपको, वो गोपियां, हाँ गोपी ढूंढती है नारायण, नारायण बीच में नारायण मिल जाते हैं, तो नारायण मिल जाते हैं तो वो नारायण बोले किसको ढूंढ रहे हो? बोले हम कृष्ण को ढूंढ रहे। बोले मैं ही हूँ सबका आदि, मैं ही हूँ परमेश्वर, मैं ही कृष्ण हूँ, ये सब। तो गोपियां आपस में देख कर हंसने लगे, बोले क्या बोल रहा है? बोले सॉरी सॉरी सॉरी, आप अपना काम कीजिए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, हम तो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, आप सहायता कर सकते हो तो ठीक है, नहीं सहायता करते हम हमारे रास्ते, अब आपके रास्ते। नारायण भी, नारायण का मुंह ऐसा होगा, बोले यार कोई मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इनके सामने। चार हाथ वाले भगवान नारायण, ऑफकोर्स वही ब्रह्मा जी को तो ज्ञान देने वाले थे, ब्रह्म हृदय आदि कवे मयाध्यक्ष प्रकृति भगवान बोलते है, तो प्रकृति को चलाने वाले, लेकिन ब्रजवासियों के लिए इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, नारायण की वैल्यू। नारायण को आप अब बात करोगे हंसेंगे लोग, क्या बोल रहा है ये?
तो प्रभु जी जिसने जो सूरज जिसने देखा हो तो दीपक की क्या वैल्यू करेगा?
हाँ, लेकिन हालांकि इन दोनों में बहुत कम अंतर है, कृष्ण में और नारायण में, लेकिन भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं वो कहीं पर नहीं जाते। सो ये भगवान की अंतरंग शक्ति के शरणागत होते ये भक्त पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं और उनके हृदय में और कोई इच्छा नहीं होती, सब प्रकार के भौतिक कामनाओं को त्याग देते हैं। सुनने में आसान है लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने में मुश्किल होता है। इच्छाओं का त्याग करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए प्रभुपाद बताया कि इच्छाओं का त्याग नहीं हो सकता। आध्यात्मिक इच्छाएं स्ट्रांग बनाने से भौतिक इच्छा कमजोर हो जाती है और भौतिक इच्छा कमजोर होने से धीरे 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 फिर वो इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर वो भूखी प्यासी चली जाती है, वो फुलफिल नहीं होती ना, इसलिए। सो स्ट्रांग सरेंडर, हम अपने आप को अगर शरणागत बनाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि भगवान के शुद्ध भक्तों का संग किया जाए। अभी ये महात्मा लोग करते क्या है, टेक्स्ट नंबर 40 में पढ़िए।
ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते
हैं। हाँ, ये श्लोक के विषय में प्रभुपाद बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी कहा है, जो महात्मा होता है वो समय या काल का स्थान का चिंता किए बिना निरंतर भगवान का गुणगान करते, निरंतर। क्या श्लोक है ये? सततम कीर्तयन तो यदंतश्च दृढ़व्रता नमस्ते अंतश्च मां नित्ययुक्ता उपासते, अगेन नित्ययुक्ता, अगेन सततम, एक ही श्लोक में दो बार सततम नित्ययुक्ता, सततम कांस्टेंट, सततम। एक बार प्रभुपाद का प्रभुपाद यूज्ड टू से 24 hours a day, 24 घंटा। तो कई बार हम लोग जब शुरू शुरू में पढ़ता था 24 घंटा कृष्ण का कीर्तन करना, 24 घंटा कृष्ण का कीर्तन करना, ये कैसे हो सकता है? 24 घंटा भगवान का चिंतन कैसे हो सकता है? आप खाओगे तो सही, आप स्नान तो करोगे, आपको थकान लगेगी, आप सो जाओगे, तो 24 घंटा कैसे हो पाएगा? प्रभुपाद का नहीं, 24 hours a day। फिर बाद में किसी ने प्रभुपाद को प्रश्न किया होगा, व्हाट वी अंडरस्टूड कि व्हाट प्रभुपाद वांटेड टू से, प्रभुपाद क्या कहना चाहते थे? प्रभुपाद ये कहना चाहते थे कि अगर आप पूरा परिश्रम करते हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो बाद में थकान लगने के बाद अगर आपको नींद आ जाती है, आप सोने का प्रयास नहीं करोगे, आप सो ही जाओगे। ऐसा नहीं कि आप बिस्तर में पड़े और थोड़ी देर के बाद नींद आई, नींद आई इतनी जोर से कि आपको बिस्तर में गिरना पड़ा, इतना परिश्रम किया था, किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता करने, इतना परिश्रम करना। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, बहुत मेहनत करता है, तो जब वो थक के सो जाता है तो माँ उसको विशेष प्यार देती है, क्यों? क्योंकि उसने बहुत मेहनत किया आज, राइट? इस तरह से भगवान उस भक्त की नींद को भी अपना सेवा मानते हैं, तो ये सो रहा है वो भी उसका सेवा है। तो भगवान के भक्तों की नींद, भक्तों का खाना, भक्तों का चलना नहाना, हेल्थ केयर, ये सब कुछ 24 hours a day में काउंट होता है, ये भक्ति में काउंट होता है। लेकिन शर्त क्या है? नित्य युक्ता उपासते, निरंतर कृष्ण का गुणगान गाना। अपने लिए करेगा तो फिर वो भक्ति नहीं मानी जाएगी, वो 24 hours नहीं होगा। सततम वो निरंतर प्रणाम करता है और फिक्स नंबर चैंट करता है माला का जप। ऐसा नहीं कि आज दो माला, कल चार माला, एक बार 15 कर लिया, बार हम ये काउंटिंग बीट्स क्यों रखते हैं? जो एक साक्षी बीट्स बोलते हैं या काउंटिंग बीट्स बोलते हो ना आप, जो माला के साथ लगा होता है काउंट करने, क्यों? क्योंकि संख्या पूर्वक नाम गान नतवी, संख्या पूर्वक इसको काउंट करके करना है, काउंटिंग होना चाहिए कि आपने 16 कम से कम करा, आगे कितना भी करो 160 कर दो, 1060 करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मिनिमम 16 माला अवश्य करना है। इसलिए काउंटिंग रखना पड़ता है, यह आवश्यक है, काउंट करना चाहिए। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे,
कम से कम इतना ईएमआई, मतलब जैसे ईएमआई टाइप नहीं,
यस,
इतना डेली तो देना
ही, इतना तो देना। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा करते हो, बोनस करते हो, नो प्रॉब्लम।
मिनिमम कितना क्यों आ रहा है?
यस, एक गुरुजी बताए, प्रभुपाद बताए, 16 माला करना है तो ये मिनिमम है। बट प्रभुपाद ने क्या कंडीशन डाला था, पहले 64 बोला, 64 नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, 32 करो। सब लोग रोने लगे, 64 तो नहीं हो पा रहा है, वो प्रभुपाद क्या करें। प्रभुपाद उस समय की बात, स्वामी ये बोलते प्रभुपाद, प्रभुपाद ने कहा ठीक है 32 करो। खुद एक दो दिन के बाद फिर से वापस आए, 32 भी नहीं हो पा रहे, तो फिर प्रभुपाद ने कहा ओके 16 नो मोर लेस, बट प्रोवाइडेड यू हैव टू सर्व एंटायर डे। आपको 16 माला कम से कम करना है, इससे कम नहीं होगा, लेकिन आपको शर्त यह रहेगी कि आपको सेवा करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू डू। तो इसलिए इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम अर्ध कुकुट ही नहीं आए, 16 माला करेंगे बस, यही प्रभुपाद ने बताया था, सेवा करेंगे तो प्रभु सब सेवा ही है ना, हम जो कुछ कर रहे हैं सब सेवा ही है, हाँ ये प्रॉब्लम है। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, इस श्लोक के एक लेक्चर में भी प्रभुपाद ने कहा है कि वो ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ सेवा करता है। भज शब्द का यहां पर अर्थ होता है सेवा करना, वो बैठे नहीं रह सकता, बैठे नहीं रह सकता, ही कैनॉट सिट, यू नो। कई बार जनरली हम देखते, कई बार भक्त लोग सेवा के नाम पे स्टेप बैक करते, सेवा की बात आती है तो या तो फिर आलस के कारण आलस्य होता है, या फिर स्वार्थ की भावना होती है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, यू नो। चलो धन नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, प्रतिष्ठा तो मिलनी चाहिए, नाम तो मिलना चाहिए, तो ये स्वार्थ की भावना आती है। फिर अज्ञानता, आकर्षण, आसक्ति भौतिक चीजों के प्रति, तो ये सारी चीजों के कारण हम लोग सेवा की महत्वता को समझ नहीं पा रहे। कई बार ये पूरा सब जगह ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि भक्त लोग, अगर स्वर्ण लोग के आपका अहमदाबाद मंदिर का बात कर लो, अहमदाबाद मंदिर में अगर आपके 400, 500, 700 जितना भी कांग्रीगेशन नंबर है, कांग्रीगेशन ड्यूज, अगर सारे के सारे जितने भी भक्त हैं, ये सारे भक्त इस सेवा की भावना को थोड़ा सा अनुकूल करना शुरू कर दे, थोड़ा सा अधिक सेवा देना प्रयास करे, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। हमारे पास ऐसा बहुत समय होता है कि जो हम व्यर्थ गंवा रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग करना चाहिए। अभी कई बार प्रॉब्लम होती है कि हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, हमें पता नहीं कि सेवा किस तरह से करनी होती है, या तो फिर हमें गाइड करने वाला प्रॉपर नहीं है, या फिर गाइड हम अपने हमारे जो गाइड है उनको पूछना चाहिए कि हम क्या सेवा करें। और मंदिर में भगवान के विग्रह होने के कारण सेवाओं की संख्या भी बढ़ जाती है, भगवान के विग्रह होते हैं, घर में भगवान के विग्रह छोटे होते हैं और उनकी पूजा इतने महिमा से, इतना विस्तार से नहीं होता, लेकिन भगवान के विग्रहों की सेवा मंदिर में जो होता है वो बड़े विस्तार से होता है। इसलिए मंदिर जो है वहां पर आपको अनेक भक्तों का संग प्राप्त होता है, अनेक सेवाओं का अपॉर्चुनिटी प्राप्त होता है। इसलिए सेवाओं के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, या तो फिर आप अपने गाइड को पूछो, या मंदिर के अध्यक्ष को पूछो, के कोई अथॉरिटी है उनको पूछो कि मैं किस प्रकार से, मेरे पास रोज 1 घंटा बचता है एक्स्ट्रा, क्या कर सकता हूं मैं, मेरे पास रोज दो घंटा एक्स्ट्रा है, क्या कर सकता हूं मैं। समय दे सकता है कोई समय दे सकता है, कोई बुद्धि दे सकता है, वो चाहे भले फिजिकली वहां पर नहीं आते हो, लेकिन अपने दिमाग से हेल्प कर सकता हो, आइडिया दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, और उसके लिए मैन पावर इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ लोग आर्थिक दे सकते हैं, बोले मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको धन दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास इतना समय भी नहीं है, लेकिन जो धन कमाता हूं वो मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन कुछ सेवा करना चाहिए, प्रभुपाद स्पष्ट रूप से बोले कि अगर आप महात्मा बनना चाहते हो, या महात्मा के जो लक्षण होते हैं वो आलसी नहीं होते, दे आर नॉट लेजी पीपल। महात्मा आलसी नहीं होते. आई जस्ट रीड दैट पर्टिकुलर लाइन प्रभुपाद सेज. भजंती मीन्स, ये हवाई में लेक्चर दिया 75 में, भजंती मीन्स ही इज ऑलवेज एंगेज इन माई सर्विस, दैट इज महात्मा. लेजीनेस इज नॉट भक्ति. प्रभुपाद सेज भक्ति में आलस्य का कोई स्थान नहीं है. आलस्य का कोई स्थान नहीं है भक्ति में. पर कलयुग का एक लक्षण है कि लोग आलसी होते हैं. बस उसका बेसिक काम करना होता है, 16 माला हो जानी चाहिए, 2 टाइम खाना हो जाना चाहिए, सोने का हो जाना चाहिए, बाकी का टाइम पड़े रहे. तो देयर मस्ट बी एक्टिविटी. आई विल चैंट सिटिंग डाउन, हु विल नोटिस? I will doze, people will think I am chanting. This kind of cheating will not do. क्या फायदा है इसका? They should chant 16 rounds every day. You are not Haridas Thakur. You are not able to chant day and night. Although it's a lofty ideal. It is some time which at present you cannot do. 16 rounds is of japa is the minimum requirement. And that takes no more than 2 hours. That leaves 22 hours to spend for Krishna service. That is required to progress in Krishna consciousness. वो 22 घंटा जो बचा है आपके पास, उसको भगवान की सेवा में उपयोग करो. भगवान की सेवा में या भगवान के भक्तों की सेवा में उसका उपयोग करो. भगवान देखो, दो महापुरुष थे हमारे इतिहास में, महाभारत और राम रावण जो बड़े युद्ध हुए, उसमें महाभारत का हीरो था अर्जुन. अर्जुन भी बैठा नहीं रहा, अर्जुन ने युद्ध किया. आलसी नहीं था वो, और बैठा नहीं रहा, युद्ध किया. और रामायण का हीरो था हनुमान. तो हनुमान जिस तरह से काम किया, राम कामा नहीं विश्रामा, उनको बोला भी गया कि तुम इधर थोड़ा रेस्ट कर लो समुद्र पर परीक्षा लेने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. बोले राम के काम में कोई विश्राम नहीं. आप कहेंगे प्रभु कोई व्यक्ति इतना काम करेगा तो थक नहीं जाएगा? अरे भाई तुम थकने का सोचोगे इसलिए थक जाते हो. तुम थकने का सोचना बंद कर दो तो थकान नहीं आएगी. फिर जो थकान आती है ना वो आध्यात्मिक होगी. लेकिन अभी जो थकान आती है वो आलस्य के कारण आ रही है, साइकोलॉजी है. इतना काम करना तो थक ही जाएगा. मन में सेट किया है वो, इंस्टॉल कर दिया, प्रोग्रामिंग कर दिया है कि इतना काम करेगा थक जाए. तो आलस्य होता है. महात्मा ऐसे नहीं होते. आप कहेंगे प्रभु जो तो महात्मा है, मैं तो कहां महात्मा. ये दूसरा आलस्य है. इसको आलस्य बोलते कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे महात्मा भी नहीं बनना है. महात्मा बनूंगा तो मुझे आलस्य त्याग करनी पड़ेगी ना. बोले महात्मा बनना ही नहीं है तो आलस्य आलस की बात ही नहीं है. सो वी हैव टू वर्क फॉर दिस मोमेंट. और आई टेल यू, हमारे पास जो कमी है आज इस्कॉन भक्तों के लिए, हमारे हम सब के लिए, वो धन का इतना कमी नहीं है एक रूप से देखा जाए तो. हमारे पास जो कमी है वो लोक सेवा की कमी है. सेवा देने वाले लोग चाहिए. बहुत सारे कार्य ऐसे हैं कि जो हम कर नहीं पाते. एक व्यक्ति ने बहुत सारा अच्छे अच्छे आइडियाज दिए थे. एक हमारे प्रसिद्ध जो लीडर है, हमारे गुरुजी को बात कही है, वो तो मैं पूरा चर्चा हुआ था. बहुत सारे आइडियाज दिए तो बोले आप इस्कॉन संस्था ऐसा क्यों नहीं करती. हालांकि वो भक्त ने ही पूछा था, कोई डिवोटी नहीं पूछा था. तो महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से जवाब दिया. महाराज ने कहा कि ये सारे कार्य हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे 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 पास आपके जैसे लोगों की कमी है. हमारे पास इतने सारे लोग ऐसे है नहीं जो आप जैसा सोचते वैसा सोचे, या फिर आपकी तरह अपने पूरा 24 घंटा भगवान को देने को तैयार हो. तो इसलिए वी हैव टू गिव अवर टाइम, अवर एनर्जी, समय, शक्ति, बुद्धि, ये सब देना पड़ेगा भगवान की शरण में. और सेवा का दिशा मिलेगा ये हरे कृष्ण आंदोलन से, माध्यम से, प्रभुपाद के माध्यम से. तो सेवा की कोई कमी नहीं है। इतनी सेवा है कि आप हजार हजार लोग इकट्ठा करो फिर भी कोई सेवा की कमी नहीं है, इतनी सेवा है। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। सो दृढ़व्रता, ये तुम तस्य दृढ़व्रता, दृढ़व्रत का अर्थ होता है कि वो दृढ़ निश्चय के साथ पूर्ण रूप से नव भक्ति, नवदा भक्ति के सारे अंग को फॉलो करता है, श्रवणम भी करता है, कीर्तनम भी करता है, सब कुछ करता है दृढ़व्रत होकर के, और कुछ नहीं करेगा वो, यही करेगा। सो और नित्य युक्ता, नित्य युक्ता का अर्थ ये भी होता है कि जो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। गुरु की प्रसन्नता के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। सो दिस वे, दिस श्लोक इज वेरी स्पेशल। सो नाउ टेक्स्ट नंबर 15 में तीन प्रकार के लोग जो भगवान की पूजा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर रहे हैं उनकी चर्चा हुई है। उसके पढ़िए।
अन्य मनुष्य ज्ञान संवर्धन द्वारा यज्ञ में परोवायला रहे छे, तेओ परमेश्वर ने एक में अद्वितीय रूपे अनेक रूपो धरावनारा तरीके अने विराट रूपे भजे छे।
तो ये लोग जो हमने महात्मा की बात किया, वो सब कृष्ण को डायरेक्ट पूजने वाले भक्त है, डायरेक्ट सेवा करने वाले लोग। लेकिन कृष्ण का दूसरे भी जो अलग अलग विस्तार है, जैसे आगे पहले बात हुआ था, तो यहाँ पर प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी लिखा है तीन प्रकार के। श्लोक में लिखा है एकत्व है ना, पृथक्त्व है ना, विश्वतमुखम। ट्रांसलेशन में राइट, एकत्व है ना, पृथक्त्व है ना, विश्वतमुखम, ये तीन प्रकार की कैटेगरी बताई है। और तात्पर्य अगर आप देखोगे, can you read from this, these are divided into three. One, he who worship himself as one of the supreme lord, one with the supreme lord, that one.
इन्हें तीन कोटियों में रखा जाता है, एक परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, दो परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, और तीन भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले।
फर्दर,
इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इसी और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है, कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार के परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है।
यस, सो प्रभुपाद ने इस, ये आप जो पढ़ा उसके पहले प्रभुपाद ने बताया था तीन प्रकार, एक तो महात्मा, जो हाइएस्ट कैटेगरी महात्मा नंबर वन में, उसके बिलो आता है, उसके नीचे की कैटेगरी में आता है सुकृति नौ, सुकृति नौ थ्री लेवल, या तो सुकृति नौ चतुर्विधा भजन थे माम जना सुकृति नौ। और उसमें जो ज्ञानी आता है, और तीन प्रकार के ये ज्ञानी जो परम सत्य की उपासना करते हैं लेकिन अलग अलग स्वरूप में करते, डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जाते, तो वो ये तीन है। तो पहले एक रूप से देखा जाए तो कितनी सारी कैटेगरी हुई, पहले तो चार दुष्कृतियों ने बताया राइट, आगे वाले सातवें चैप्टर में चार प्रकार के लोग मेरे शरण में नहीं आते। उसके बाद फिर भगवान ने चार सकृतियों ने बताया, उसके अलावा फिर भगवान ने डेमिगॉड वर्शिपर बताया जो इसमें आ जाते हैं, और फिर एक अबुद्ध मूर्ख लोगों का कैटेगरी बताया जो मायावादी लोग होते हैं, मूर्ख एक तो अल्प बुद्धि वाला है, एक मूर्ख है, तो इसका कैटेगरी बताया। तो इसके पश्चात फिर इस अध्याय में भगवान ने कहा महात्मा जो सबसे उत्तम होता है, उत्तम कैटेगरी का अनन्य भक्त, और उसके बाद ये तीन प्रकार के, चार प्रकार के सुकृति नौ जो रिपीटेड द लास्ट पॉइंट, एंड यहाँ पर तीन प्रकार के ज्ञानी जो एकत्व है ना, जो अहम ग्रहोपासना या फिर ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो इस तरह से वो जो मानने वाले बुला रहे आपको। सो ये अलग अलग कैटेगरी है और एकत्व प्रभुपाद ने पूरा डिस्क्राइब कर ही दिया समरी के रूप में कि एकत्व कौन होता है, पृथक्त्व कौन होता है जो डेमिगॉड वर्शिपर होते हैं, और विश्वतोमुखम, विश्वतोमुखम का अर्थ है जो भगवान के विराट रूप को मानने वाले हैं। तो पृथक्त्व जो होते हैं वो बहुधा होते हैं, पृथक्त्व बहुधा, बहुधा का अर्थ होता है वेराइटीज, मैनी, बहुत सारे अलग अलग। यस,
ये जो परमेश्वर था अपने को एक मानकर पूजा करने वाले हैं उसके बारे में समझ नहीं आएगा।
हाँ, प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं इस बात को, प्रभुपाद कहते हैं कि इट इज सेकंड क्लास राइट, नो फर्स्ट क्लास या फर्स्ट कैटेगरी वाले, तो उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि कहाँ गया, कैन यू रीड दिस, मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ।
कैन यू रीड, सबसे अधम वे है वो
ना, फर्स्ट कैटेगरी जो अपने साथ
परमेश्वर था अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, सेकंड परमेश्वर की किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, थर्ड भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले।
हाँ, फिर प्रभुपाद ने इसके विषय में बताया कि जो अपने आप को,
हाँ मतलब आप बोल रहे हैं कि हाईएस्ट कैटेगरी महात्मा, सेकंड सुकृति तीनों ज्ञानी, और ये थर्ड है इसमें ये तीन आते हैं।
हाँ, लेकिन उसमें कैटेगरी, इसमें ऐसी कैटेगरी में ऐसा है कि प्रभुपाद स्वयं खुद ही बताते हैं
यहाँ पे कंडेम किया है, इसकी निंदा किया है।
हाँ, लेकिन जो सबसे उत्तम है तीन में से वो विश्वतोमुखम, वो तीनों में से सबसे उत्तम वो है, क्योंकि उसका भले वो पूर्ण रूप से भगवान को नहीं जाता लेकिन वो भगवान की विराट रूप को मानने वाला है, तो बेस्ट उसमें से वही है विश्वतोमुखम। लेकिन जो सबसे निम्न कोटि का है वो पहले वाला है, एकत्वेन वाला, वो मोनिस्टिक फिलोसॉफी बोल सकते हो उसको आप। और ये कैटेगरी प्रिडोमिनेंट है, प्रिडोमिनेंट का अर्थ होता है, प्रभुपाद इसको मेंशन किया, प्रिडोमिनेंट का अर्थ है अधिकतर लोग ऐसे हैं,
मेजोरिटी।
तो ये जो अपने आपको भगवान मानते हैं ये अलग है, और जो अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म की पूजा करते हैं वो अलग है,
वो ब्रह्मवादी है।
हाँ, ब्रह्मवादी है, दैट्स
इट। यस यस, सो नाउ नेक्स्ट श्लोक जो है उसमें अभी देवताओं की जो पृथक्त्व की बात हो रही है उसको थोड़ा भगवान डिटेल करेंगे। पढ़िए।
परंतु मुझ कर्म कांड, मुझ यज्ञ, पितृ तर्पण, औषधि तेमस दिव्य मंत्र गोष्ठी, मुझ
19 तक पढ़ लेना,
मुझ घी अग्नि अने आहुति छु, हूँ आ ब्रह्मांड नो पिता माता आश्रय दाता तथा पिता मा छु, हूँ ज्ञान नो विषय विशुद्धि करता तथा ओंकार छु, हूँ ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद पण छु, हूँ ज परम लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम आश्रय स्थान तथा अत्यंत प्रिय मित्र छु, हूँ सर्जन तथा प्रलय सर्वनो आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज छु। हे अर्जुन, मुझ उष्णता आपू छू अने हूँ वरसाद ने रोकी राखू छू तथा मोकलू छू, हूँ अमरत्व छू अने साक्षात मृत्यु पण हूँ छू, चेतन तत्व तथा जड़ तत्व बन्ने मारा में छे।
यस, तो भगवान पूरा सैक्रिफाइस का सिस्टम बताया यज्ञ का, तो पूरा सैक्रिफाइस भगवान बोलते मैं ही यज्ञ हूँ, यज्ञ के आहुतियां वो भी मैं हूँ, सब कुछ मुझसे, मैंने कहा जब भगवान ये कहते हैं कि मैं हूँ, इसका अर्थ होता है कि आई एम द अल्टीमेट गोल, मेरे लिए ये होना चाहिए, ये मेरे कारण मेरे द्वारा ही संपन्न किया जाता है, आई मीन मुझसे कुछ स्वतंत्र नहीं है, मुझसे स्वतंत्र है, आप कोई भी चीज उपयोग करो, घी भी लो, कुछ भी लो, एनीथिंग सैक्रिफाइस, आई एम द एंटायर सैक्रिफाइस, यज्ञ वही विष्णु भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि पिताहम अस्य जगतो, मैं इस सृष्टि का पितामह भी हूँ, माता धाता पिता मह, तो पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, दादा भी मैं हूँ, पालन करने वाला भी मैं हूँ, सब कुछ भगवान बोलते मैं हूँ। तो लेकिन क्योंकि ये प्रकृति भगवान की है, प्रकृति को कई बार माता कहा है, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पिता मह, तो पिता क्यों कहा गया है, क्योंकि वो पहले बताया हम बीज प्रजापिता, इस प्रकृति को जो बीज देने वाला पिता वो मैं हूं, तो फिर माता कौन है, प्रकृति है, प्रकृति माता है। जैसे प्रकृति को कई बार हम बोलते हैं नहीं मेरा प्रकृति है, मेरा नेचर है, तो नेचर किसी व्यक्ति का होता है, नेचर अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है, किसी व्यक्ति की प्रकृति होती है। तो यहाँ पर भगवान पहले बोल दिया कि मेरी प्रकृति है, तो वो प्रकृति के रूप में भी भगवान ही माता है, भगवान से स्वतंत्र नहीं है प्रकृति, भगवान से जुड़ी हुई दासी है भगवान की। इस तरह से भगवान माता भी है, पितामह भी है, धाता भी है, अह पितामह अस्य जगतो माता धाता पितामह। फिर पवित्रम ओमकारम, जो ज्ञान का अंतिम लक्ष्य वो भी मैं हूँ। पहले भगवान ने भगवद गीता में भी कई जगह बताया कि वेदों में पूरी रिसर्च करने के पश्चात आपको अगर ये परिणाम मिलना चाहिए, क्या परिणाम मिलना चाहिए, कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनल गॉड है, मैं ये पूर्ण पुरुषोत्तम, अगर ये परिणाम आपकी रिसर्च का नहीं आता है तो आपकी पूरी वेद का स्टडी बेकार। जब परिणाम पहले ही बता दिया तो रिसर्च क्यों करेगा कोई, सीधी सी बात है। इसलिए भक्त लोग इसमें नहीं पढ़ते, भक्त लोग जानते हैं कि कृष्ण सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है, भगवान सभी ज्ञान के अंतिम लक्ष्य, वो सबसे ज्यादा पवित्र करने वाले हैं, क्योंकि शरण में जो कोई भी आता है पवित्र हो जाता है, उनको चिंतन करने मात्र से पवित्र हो जाता है। मंत्र टेक्नोलॉजी आप जानते हो, मंत्र टेक्नोलॉजी, मंत्र अगर आप स्नान करते हो तो पवित्र होते हो, राइट, आपको स्नान करना पड़ता है पवित्र होने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर हो कि जहां पर आप स्नान नहीं कर पाते तो फिर क्या करें, तो फिर मंत्र टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए। क्या है मंत्र टेक्नोलॉजी, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान ऋतु पिपा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सबायाभ्यंतर सूर्य, ये मंत्र बोलने से स्नान किया है ऐसा माना जाता है शास्त्र के आधार से। इस रूप से क्या है, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति पुंडरीक भगवान का चिंतन करता है, भगवान कृष्ण का पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष का चिंतन करता है, वो अपवित्र है तो पवित्र हो जाता है, शुचवा अशुचोपी वा अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान को, तो किसी भी अवस्था में वो मुक्त हो जाता है। बाह्याभ्यंतर शुचि, उसके हृदय में बाहर में सब कुछ स्वच्छ हो जाता है। लेकिन ये मंत्र टेक्नोलॉजी इमरजेंसी में यूज करना चाहिए, हमेशा यूज नहीं करना चाहिए। सो भगवान सबसे प्योरीफायर है और सब ओम उनसे प्रकट, ओम का जो मूल बीज है वो भगवान बोलते वो मैं हूँ, मैं ही रुख शाम यजुर मैं ही हूँ, क्योंकि वेद को बनाने वाला ही मैं हूँ, वेद में जानने वाला भी मैं हूँ, फिर मैं ही अंतिम लक्ष्य हूँ, पोषण करने वाला स्वामी साक्षी धाम आश्रय मित्र सबका भगवान बोलते वो मैं हूँ। स्पष्ट रूप से भगवान ने यहाँ पर क्लियर किया है, अंतिम लक्ष्य भगवान है किसी चीज का भी, कोई भी चीज का अंतिम लक्ष्य साधन साध्य। आप किसी को भी पूछना चाहते हो कि वो कोई अगर वो भक्त नहीं है किसी और मार्ग में जुड़ा हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या करना है, किसी को भी यही प्रश्न पूछो कि आपका साधन और साध्य क्या है, अगर वो इतना उसको आता है तो उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है। साधन का अर्थ होता है प्रोसेस और साध्य का अर्थ होता है गोल, तो प्रोसेस क्या है और गोल क्या है ये हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। भगवान कहते हैं प्रोसेस भी मैं हूँ गोल भी मैं हूँ, और भगवान सबके परम मित्र है, आपको कभी दुखष्ट नहीं होने, कभी दुखी होने नहीं होने, आपके साथ हमेशा रहेंगे, और वो ऐसे मित्र है कि आपकी गलतियों को क्षमा करना उनकी हैबिट हो गई है, ऐसे ऐसे मित्र है, सबसे प्रिय मित्र है। जिसकी छठे अध्याय ना कौन से अध्याय में चर्चा की थी, पांचवे अध्याय में चर्चा की थी, पांचवे अध्याय के अंतिम श्लोक में कि भगवान सबके प्रिय मित्र है। भगवान पृथ्वी, ये जड़ और प्रकृति और आध्यात्मिक, ये दोनों का मूल भगवान ही है। भगवान बोलते मैं ही अमर हूँ, अमृतत्व। आई एम ऑल्सो डेथ पर्सिफाइड, मृत्यु सर्वहरष अहम। अगर कोई व्यक्ति साधारण रूप से भगवान के शरण में नहीं आता तो भगवान उसका तिरस्कार नहीं करते। भगवान कहते हैं कि या तो तुम मेरी शरण में आओ या तो मैं सामने से तुम्हारे पास आता हूँ, लेकिन अपना मिलाप तो होना ही है। आप भक्त के रूप में भगवान को सम्मान करके उनकी शरण में आओ, तभी मिलाप हो सकता है। अगर नहीं करोगे ऐसा, मुझे छोड़ दोगे, तो भी मैं आऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन मृत्यु के रूप में आऊंगा। मृत्यु के रूप में आऊंगा, सब कुछ छीन लूंगा तुम्हारा, कुछ नहीं बचे। उस समय कोई रिक्वेस्ट कुछ काम नहीं करेगी। इसलिए मृत्यु को क्रूर माना जाता है, राइट? मृत्यु इज कंसीडर्ड टू बी क्रूअल मृत्यु। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही इन सबको इनका मूल हूं। बारिश को रोकता हूं, बाद में उसको लेता हूं। प्रभुपाद समराइज करते हैं, सिंस कृष्णा इज बोथ मैटर एंड स्पिरिट, द जायंटिक यूनिवर्सल फॉर्म कंप्राइजिंग ऑल मटेरियल मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो कृष्णा। His pastime in Vrindavan as two-handed Shyam Sundar playing on a flute are those of the Supreme Personality of Godhead. Prabhupada ye tatpar mein kehte hain. Ab Krishna aage wo prithak trena wale jo hai devtaon ki puja karne wale, unke vishay mein Bhagwan aage batate hain. Is padhiye.
जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं।
हाँ, जो सोमरस का पान करने का इच्छा है, स्वर्ग की इच्छा है, वो लोग अप्रत्यक्ष भाव से। श्लोक कौन सा है? वो लोग इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, और पाप सिंफुल जो रिएक्शन उससे मुक्त होकर के। सो जनरली भगवान की पूजा और देवताओं की पूजा में ये महत्वपूर्ण अंतर है। देवताओं की पूजा करने वाले अधिकतर लोग भौतिक लाभ के लिए करते हैं, पहले आगे चैप्टर्स में बताया गया था। अगर कोई व्यक्ति भगवान की कनेक्टेड रूप में, देवता भगवान से कनेक्टेड इस तरह से पूजा करते, तो उनको अंततो गत्वा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। लेकिन भगवान से देवताओं को इंडिपेंडेंट गॉड के रूप में पूजा करेंगे, स्वतंत्र भगवान के रूप में, तब फिर समस्या खड़ी होती है। तब फिर वो लोग पुनः पुनः इधर उधर चक्कर मारते रहते, उनका आगे का कुछ प्रोग्रेस नहीं होता। कोई दुर्गा देवी को, अंबा देवी को, बहुचर को, चेहर को, कौन सी कौन सी, संतोषी और कौन कौन सी, इन सब की जो माताएं हैं, इन सबको स्वतंत्र ईश्वर मान के, भगवान मान करके, या शिव जी को या गणेश को, इनको स्वतंत्र ईश्वर मान के काम करता है, तो सेम प्रॉब्लम, वो सफलता आगे नहीं मिल सकता उसको। तो इंद्रिय भोग के लिए ये लोग प्रयास करते हैं, और जैसे ही उनका पुण्य का कोटा खत्म होता है, मेरिट खत्म होता है, तो फिर से क्षीण पुण्य सारा मेरिट खत्म। इतना मेहनत करके, बहुत इतने सालों की तपस्या की, इतने साल यज्ञ किए, इतने दान किए, पुण्य किए, तो स्वर्ग में उसको स्थान मिला, सोमरस का पान किया, फिर वो कौन से गार्डन में, नंदन कानन में, वहां के गार्डन का नाम नंदन कानन, तो नंदन कानन में घूमता रहता है, अफसरों के साथ विहार करता है, स्वर्ग का वो सब देख करके पूरा उसका मेरिट खत्म होता है। वहां पर एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आप करोगे तो मेरिट एग्जॉस्ट नहीं होता है। केवल किसी अफसरा को देखने मात्र से आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, देखने मात्र से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उस बगीचे में, नंदन कानन में घूमने मात्र से आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं।
जैसे तो ये एंट्री फीस नहीं होती मेले में?
हाँ,
एंट्री फीस है, घुस गए फिर जो देखा उसका टिकट,
यस,
पैसे खत्म हो गए
तो बात। अगर आप प्लेन चलते हो, प्लेन चलाते हो, तो प्लेन में आप ऊपर चढ़ते हो, आप घूम सकते हो, घूमते रहते हो घूमते रहते हो घूमते रहते हो, आप घूम सकते हो, लेकिन प्लेन में एक फ्यूल चाहिए। जो फ्यूल खत्म होने से पहले प्लेन को नीचे आना पड़ता है ना, या फिर आकाश में फ्यूल फ्यूल आकाश में खत्म हो गया, यू नो सारा मेरिट पूरा हो गया,
तभी तो गिरते हैं ना,
तो प्लेन नीचे गिरेगा,
लैंड नहीं करते, गिरते हैं।
तो ऐसी हाल हो जाएगी, यू नीड मेरिट इवन टू गेट टू द यू नो बैक टू मटेरियल वर्ल्ड, आई मीन दिस पृथ्वी वर्ल्ड। इसलिए आपको इसको क्षीण पुण्य, पुण्य क्षीण होने पर पुण्य की क्रेडिट खत्म हो जाती है। देवताओं की उपासना करने वाले का ये होता है। 21 नंबर पढ़िए।
આ રીતે જ્યારે તેઓ વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે છે અને તેમના પુણ્ય કર્મોને ફળ પૂરા થઈ જાય છે ત્યારે તેઓ આ મૃત્યુ લોકમાં પાછા આવે છે, એ રીતે જે મનુષ્ય ત્રણ વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા રહે છે।
तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम वही क्षीणे पुण्य लोकम विशाल वही है ना। तो उनको स्वर्ग मिलता है लेकिन बाद में फिर वो लोग यहाँ पर गिर जाते हैं, जैसे वही बताया अभी अभी क्षीणे पुण्य लोकम विशाल थी। सो महाभारत के वन पर्व में एक मुद्गल करके एक स्टोरी आती है, मुद्गल की पूरा स्टोरी नहीं बताएंगे हम अभी, लेकिन वो मुद्गल को स्वर्ग में स्थान मिला था। तो स्वर्ग में वहां पर गए पुण्य कर्मों के बल से, और स्वर्ग में जाकर के देखा कि उसको पहले ऑफर मिली कि स्वर्ग में तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड जो है वो एग्जॉस्ट कर सकते हो, आप क्रेडिट लिमिट जो आपकी है वो एग्जॉस्ट कर सकते हो, एग्जॉस्ट कार्ड होता है इसको यूज कर सकते हो, इसको उपयोग कर सकते हो। सो बोले अभी पहले कुछ कोई क्रेडिट कार्ड यूज मत करो, कोई पुण्य पुण्य का मेरिट यूज मत करो, पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि स्वर्ग का सिचुएशन क्या है। मुद्गल ने कहा तो स्वर्ग में कौन से सुख है, क्या लिमिटेशन है, वो तो पहले मैं चेक करना चाहता हूँ। तो पूरा रीडिंग किया, पूरा यू नो स्कैनिंग किया, पूरा एनवायरमेंटल स्कैन पूरा चेक किया स्वर्ग का, उसके बाद फिर सारी प्लस माइनस सब चेक कर लिया स्वर का, बाद में बोले क्रेडिट कार्ड को यूज मत करना, मेरे पुण्य का कोई यूज मत करना क्योंकि मैं स्वर का एक भी चीज यूज करना नहीं चाहता। तो बोले फिर एक्सेप्शनल केस था, एक्सेप्शनल केस था, फर्स्ट रूप था। तो बोले जैसा है वैसे पड़े रहो, मैं और पुण्य कर रहा हूं और तो क्या हुआ, स्वर भूर भूअर स्वर मर जना तपस्य, सात लोग है ना, तो एक 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 करके सीधा भगवान के धाम चले, पर नीचे आना ही नहीं है, क्षीण पुण्य होने ही नहीं दिया, क्षीण पुण्य मर्द लोगों को मिशन थे ना, लेकिन पुण्य क्षीण करने ही नहीं दूंगा तो क्या होगा। तो दिस इज द अर्जुन गया था एक बार स्वर्ग में, लेकिन भगवान ने स्पेशल परमिशन दिया था इसलिए, लेकिन साइंटिस्ट लोग नहीं जा सकते। रावण जाना चाहता था स्वर्ग में, सीढ़ी बनाया था उसने ऊपर जाने के लिए और नहीं जा पाया, उसको स्वर्ग में जाने का इच्छा था। हाँ अर्जुन कोई भोग इच्छा कुछ नहीं किया, वो तो पर्पस के साथ गया था, बिना काम के अर्जुन भी नहीं गया था स्वर्ग में, पर्पस के साथ गया था। क्या पर्पस था, दिव्यास्त्र इकट्ठा करने के लिए गया था इसलिए। सो यस,
ये जो देवता की उपासना करते हैं तो वो लोग तो कोई मतलब शुद्ध मन से या सत्वगुण में स्थित होकर करते नहीं है, वो लोग तो जैसे हफ्ते में एक बार जाते हैं कोई पर्टिकुलर दिन, 10 मिनट दर्शन करके वापिस चले जाते हैं और घर पे थोड़ा बहुत पूजा करते हैं और बाकी सब नॉनसेंस तो करते ही है, तो उनको कैसे पुण्य मतलब स्वर्ग लोग प्राप्त हो सकता है।
आज के समय के जो फॉलोअर्स है डेमी गॉड के, वो बहुत ही कम चांसेस है उनके वो स्वर्ग में जाए। स्वर्ग में अभी कर्फ्यू चल रहा है, इधर से कोई कस्टमर आता नहीं, ट्रैवल पूरा बिजनेस खत्म हो गया, टूरिस्ट प्लेस खत्म हो गया। ऑफ कोर्स ये तो केवल जो का पार्ट, लेकिन अलग अलग बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, तो वो लोग, लेकिन पृथ्वी लोक से स्वर्ग की और जाने वाले लोगों की संख्या जनरली कम हो जाती है। हाँ, भक्त लोग को स्वर्ग में स्थान मिल सकता है। आप लोगों को
योग भ्रष्ट
या तो फिर कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि गंभीर नहीं हो पाए थे, सिंसियर नहीं हो पाए थे, माला वाला सब करते थे लेकिन गंभीर नहीं हो पाए थे, और मन में इच्छा बहुत सारी थी, भौतिक इच्छा, तो उनको टेम्पररी दिखाया, बोले ये जाओ पास देता हूँ स्वर्ग का, घूम फिर के आओ, फिर वापस भक्ति करना। योग भ्रष्ट रिस्की मैटर है, वहां जाने का फायदा नहीं है कोई।
एक प्रश्न है कि जैसे मरने के बाद यमदूत पकड़ के ले जा रहे हो, तो उस दौरान नाम जप कर सकते हैं नहीं कर सकते?
कर सकते क्यों नहीं कर सकते, लेकिन यमदूत पकड़ के ले जाते हैं उसी समय अगर नाम जप करने वाला, एग्जांपल विष्णुदूत का ये है अजामिल वाला, तो उसने तो तुरंत विष्णुदूत आ गए, छोड़ दो, तो एक बार हिस्ट्री में हो गया, इसलिए आप यमदूत गलती नहीं करते फिर से।
तो सुप्रीम कोर्ट की तरह वो आर्डर बन जाता है ना, कानून बन
जाता है। तो उसी दिन बन गया था, अजामिल वाले दिन से बन गया कानून, तो इसलिए जैसे ही बोलते हैं तुरंत यमदूत हाथ जोड़ के खड़े, सॉरी।
अंतिम और आखिरी और पहला उद्देश्य यही है, नाम जप करते रहो।
हाँ, नाम जप करना, लेकिन भगवान को तत्वतः जानना भी इम्पोर्टेंट है। भगवान का नाम जप करने में उसका जो महिमा, उसका जो रस है, वो तभी प्राप्त होता है जब आप उसकी महिमा को जानते हो, नाम जप की महिमा को जानते हो। उस कृष्णा भगवान बार बार कहते हैं ना, मुझे यो जाना थी तत्वता, यो जाना थी तत्व। तो तत्वता कैसे जानना? तत्व जानने का अर्थ होता है भगवान को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, वो किस तरह से परमेश्वर है वो सब जानना। समटाइम से एक, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। अच्छा, तुम कृष्ण के भक्त हो? हाँ। और कृष्ण महान है? बहुत महान है। कितने महान है? बहुत महान है। कितने महान है? गॉड इज ग्रेट। बस इतना ही, इससे अधिक नहीं पता मुझे। तो इस प्रकार के भक्त लोग आपके ऐसे उड़ाएंगे, बोले ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट गॉड, उसको पता ही नहीं भगवान कितने महान है, किस प्रकार। तो इसलिए वी मस्ट नो, बट द प्रोसेस इज चैंटिंग ऑफ द होली। प्रोसेस जो है भगवान को जानने का, वो है चैंटिंग ऑफ द होली। ऑफ कोर्स चैंटिंग, प्रभुपाद से शिक्षण राउंड एंड सर्विसेस, क्योंकि आज हमारे दास ठाकुर जैसे है नहीं कि हम पूरा दिन जप कर पाएंगे, इसलिए 16 माला जप कर सकते हैं और फिर सेवा कर सकते हैं। कई बार वो अभी दीक्षा का इंटरव्यू था, मैं बैठा था मंदिर में, तो कुछ लोग सबको पूछने का सेवा था मुझे कि तुम कितना माला जप करोगे, तो कोई बोलता था कि मैं 20 माला करूंगा, कोई बोलता था 16 करूंगा, कोई बोल रहा मैं 32। मैं ऐसे नहीं, मिनिमम कितना करोगे? तो उसने बोले मिनिमम भी मैं 20 करूंगा। तो फिर मैंने उनको कहा ठीक है, तुम मिनिमम 16 करना, 20 नहीं, मिनिमम 16 करना, और फिर जितना हो सके उतना करना। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि ये प्रभुपाद ने सिखाया है, 16 करो फिर अधिक कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 16 करो और सेवा करो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आगे वाले श्लोक में भगवान के भक्त के विषय में बात बताई गई है। ये तो स्वर्ग, ये लोग तो इधर जाते घूम फिर के वापिस आ जाते, लेकिन अब जो भगवान के शुद्ध भक्त है उन लोग का किस प्रकार से मेंटेनेंस वगैरह सब होता है वो पढ़िए।
किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता
हूँ। अनन्य चिंतन तमाम ये जना परिपास, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, निरंतर अनन्य भाव से, अनन्य फिर से अनन्य आया, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना प्रतिपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। फिर से यहाँ पर नित्या, देखो यहाँ पर आगे वाले श्लोक में भी भगवान ने अनन्य और नित्य शब्द, यहाँ पर भी अनन्य और नित्य, उसके पहले वाले में भी अनन्य और नित्य, कॉम्बिनेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड साथ में होता है साथ साथ। तो अनन्यश्चिन्त तेषां नित्याभियुक्तानां, नित्य निरंतर भाव से वो मेरी सेवा करता है, अनन्य भाव से उसका भगवान पूरा भार उठा लेते हैं, उसके पास जो कुछ है उसकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए आप ये नहीं सोचना कि अगर इंश्योरेंस कंपनी उठ गई कल उठ कर मेरा क्या होगा। या कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, कुछ लोग उल्टा ऐसा भी कहते हैं, कुछ लोग मैं सुना है सॉरी टू से कि ऐसा सुना है कि बोला आप मंदिर में ब्रह्मचारी बनोगे जवान हो तब तक तो ठीक है, बूढ़े हो जाओगे फिर क्या, आपकी सहायता कौन करेगा, बोले कोई मंदिर नहीं रखेगा आपको। अच्छा, तो यही तुम्हारी श्रद्धा थी भगवान के चरणों में, तो अभी योगक्षेम भाव में जो आपने भगवद गीता में पढ़ा था उसका क्या। ये कमजोर श्रद्धा वाले लोग ये इस प्रकार की जो भक्ति है उसको समझ नहीं पाते। अरे भाई वो ब्रह्मचारी का तो टेक केयर भगवान करता है, लेकिन तुम्हारा भी तो भगवान करता है, तुम कहां से खुद से लेके आया, तुम्हारे पास है क्या, कुछ है तो नहीं, तो भगवान ही तो दे रहे हैं सब कुछ, जो आवश्यकता है वो पूरी करते हैं भगवान, और जो तुम्हारे पास है उसको संरक्षण करते हैं भगवान। योगक्षेम भगवान की तीन मुख्य नेचर है, तीन उनके मुख्य क्वालिटी है, चैतन्य चरितामृत में मेंशन किया गया है। एक है ऐश्वर्य, माधुर्य और कारुण्य, ये तीन उनके महत्वपूर्ण, उनकी लीलाएं भी इस तरह से तीन भाव तीन विभाग में बटी हुई है, और उनके धाम भी इस प्रकार से तीन विभाग में बटे हुए हैं, ऐश्वर्य अर्थात ऑपुलेंस, फिर माधुर्य स्वीटनेस और औदार्य या कारुण्य भगवान का दया। तो उसमें सबसे महान जो क्वालिटी माना गया है वो है करुणा, कारुण्य। कारुण्य शक्ति के विषय में ऐसा कहा गया कि जब भगवान की कृपा शक्ति सामने आती है तो सारी शक्तियां ऑन द स्पॉट चुप होकर के हाथ जोड़ करके पूरा पैसेज क्लियर कर देती है, यू आर मोस्ट वेलकम सर। कारुण्य शक्ति का इतना मान है, अर्थात भगवान की जब कृपा शक्ति सामने आती है तो बाकी सारी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है, उस पर कृपा हो जाती है, कृपा शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, भगवान भक्तों के भक्त, उनका और कोई काम ही नहीं है, बस यही काम है उनका, भगवान अपने भक्तों का सहायता करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी आवश्यकता पूरी करते हैं, यही उनका काम है और कुछ काम नहीं है भगवान के भक्तों का। सो जैसे अर्जुन का चैरिट भगवान ने चलाया, अभी भगवान इतने भक्त वत्सल है, वी डोंट हैव टाइम टू डिस्कस मोर अबाउट इट, बट इस भक्त वत्सल क्वालिटी भगवान का बड़ा स्पेशल है। अर्जुन का चैरिट चलाया था तो पूरा भगवान ने सारथी का रूप है, सारथी दास जो नौकर होता है उसको सारथी बोलते हैं जनरली ये, और जब युद्ध चल रहा होता है तो बात करने का टाइम नहीं होता है और तो चरण में बैठना पड़ता है सारथी को, और बात करने का टाइम नहीं होता, ऐसा नहीं कि हे कृष्ण मेरे रथ को अभी इधर ले जाओ अभी उधर ले जाओ, ऐसा नहीं होता है। और युद्ध करते करते लात मार के सारथी को बताया जाता है कि नाउ लेफ्ट नाउ राइट, इस तरह से बताया जाता है। आप सोचो अभी कृष्ण निरंतर अर्जुन का लात खा रहे हैं, और घोड़ों का सेवा भी करना पड़ता है, घोड़ों की देखभाल करनी पड़ती है, ये सब कुछ करना पड़ता है, ये है भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्तों की वत्सलता, भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं इस तरह से।
कलयुग में भी प्रभु जी सूरदास जी की लकड़ी को हमेशा पकड़े रहते
हैं। यस, भगवान हमेशा सेवा। एक अर्जुन आचार्य की कथा है बहुत बड़ी फेमस है जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण है, प्रभुपाद यूज टू कोट अबाउट दिस, प्रभुपाद पहले बता दिया सो मिस्टर मटेरियलिस्ट यू मस्ट हैव टू वर्क हार्ड, तो भौतिकवादी व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट फॉर द रिवॉर्ड इज भगवान के भक्तों को भगवान सुरक्षा प्रदान, भगवान व्यवस्था करते हैं। कैसे अर्जुन आचार्य कहते, अर्जुन आचार्य करके एक ब्राह्मण था, अर्जुन आचार्य करके एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी के साथ वो जगन्नाथपुरी में रहता था, लेकिन वो अर्जुन आचार्य के पास खाने का कोई व्यवस्था नहीं था, बेचारा गरीब था, और उसकी पत्नी बोलती थी अब क्या करेंगे कैसे करेंगे, जगन्नाथपुरी छोड़कर किसी और जगह भिक्षा मांग कर कोई देने, भिक्षा भी नहीं देता था, तो बेचारा इतना दुखी रहता था कि अब क्या करे, भोजन का व्यवस्था नहीं, बच्चे को क्या खिलाए, खुद खा खुद उपवास करे तो पत्नी को तो खिलाना पड़ेगा ना, खुद उपवास करेगा तो, लेकिन इतना भी व्यवस्था नहीं कि तो पत्नी भी उपवास कर ले चाहे पति के साथ, बच्चों को तो खिलाना पड़ेगा ना, तो क्या करे, वो इतने दुखी थे अर्जुन आचार्य, भिक्षा मांगते तो वो एक बार, लेकिन बड़े अच्छे भक्त थे। तो भगवद गीता का वो श्लोक पढ़ रहे थे नौवें अध्याय में ये श्लोक आ गया, टेक्स्ट नंबर 22 नंबर का ये श्लोक आ गया। और वहां पर पढ़ा कि अनन्य तमाम ये जना परिवार से ईशान नित्याभिक्ता वहामी शब्द तो अर्थ होता है भार, बोझा वहन करना, बोझा वहन करना, वहाम्य हम वहामी बोले, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के लिए थोड़ी बोझा होता है, भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों का बोझा उठाए ये कुछ जम नहीं रही बात। तो उन्होंने क्या किया, ब्लेड लेकर के वहां भी शब्द काट दिया, उसमें करोमी कर दिया, करोम्य हम, और ये ठीक है, वहां भी हम ठीक नहीं है, भगवान है, भगवान है, भगवान भगवान थोड़ी वहन करेंगे किसी बाहर का, करोमी। तो इतना बोल के बोले, मैं तुम पत्नी को बोला कि मैं देखता हूँ कुछ भिक्षा मांगने जाता हूँ, कुछ मिल गया तो कुछ खा लेंगे आज। जगन्नाथ पुरी में थे तो भिक्षा मांगने के लिए गए, थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर नॉक हुआ, खटखटाया, जोर जोर से खटखटाया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पत्नी आई, बोले क्या बात है, उनकी जो ब्राह्मणी थी, दरवाजा खोला तो देखा बहुत सुंदर दो लड़के, एक सांवला था और एक गोरा था, और इतनी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें और इतना सुंदर चेहरा, उनका स्माइल, करली हेयर, और बड़ा सुंदर दिखने में था। उनके साथ कुछ सामान उनके साथ था। तो कहा, अरे बालको आप कौन हो, किससे? बोले हमारे पास अधिक समय नहीं है, इसलिए हम हमारे आपके सारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम आपके लिए बहुत सारे सामान लेके आए हैं इधर, जो आपके आपके पति ने भिजवाया है, बहुत सारा सामान है, ये बहुत सारे दाल है, चावल है, गेहूं है, घी है, शक्कर है, बहुत सारी चीजें। तो बोले ये सब भिजवाया है, तो इसको कृपा करके आप ग्रहण कर लो। तो बोले अच्छा, इतना सारा भिक्षा एक ही दिन में, अचानक से कौन सा कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मिल गया क्या इतना सारा? बोले माता इसको ले लो। तो बोले ही अच्छा, लेकिन भीतर तो आओ। बोले नहीं, हम भीतर नहीं आएंगे, हमें जल्दी हमें जाना है, तुम्हारे पति आए इससे पहले हमें भागना है इधर से। तो बोले क्यों? बोले हम उनसे बहुत डरते हैं। बोले मेरी पति से आप डरते हो? बोले हाँ। क्यों डरते हो? बोले वो पिटाई करते हैं, मारते हैं। बोले मेरा पति आपको मारता है? इतने छोटे, इतने कोमल कोमल सुंदर सुंदर बालकों को मारता है, ऐसा कब से हो गया मेरा पति? ऐसा था ही नहीं, इनका स्वभाव तो ऐसा है नहीं, ये कब से ऐसा करने लगे? लेकिन बेटा कुछ खा पी के जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं। बोले वो तुम्हारा पति आ जाएगा, देखो अपना पेट दिखाया भगवान ने, देखो मारा है मुझे। तो मैं चला गया, ओ बाप रे बाप, तुम्हें मार दिया, आने दो उनको। बच्चे बोला माता हम जाते हैं। तो बोले ठीक है बेटा तुम जाओ। फिर पति आए वहां पर खाली हाथ, कुछ भी साथ में, कोई नहीं भिक्षा नहीं दिया, खाली हाथ वापिस आए। खाली हाथ वापिस आकर के पूरे निराश मुंह पे आए थे, पूरा बैठ के कुछ सोच रहे थे, और देखा तो पत्नी भोजन ले रही है। ये कब से उल्टी गंगा शुरू हो गई? बोले आज तक मुझे खिलाए बिना तुम कभी खाती नहीं हो, ये संस्कृति है हमारी, मुझे खिलाए बिना तुम कभी खाती नहीं हो, और आज मुझे खिलाए बिना खुद ही खाने भोजन लेने के लिए बैठ गई। तो बोले मुझे, लेकिन सबसे पहले ये तो बताओ भोजन आया कहां से, खाने की तो बात दूर, भोजन आया कहां से? तो पत्नी ने कहा कि क्षमा करे प्रभु, लेकिन दो बालक आए थे, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप इतने क्रूर कब से हो गए, आप इतने क्रूर कब से हो गए? बोले मैं क्रूर? बोले हाँ, और नहीं तो क्या, कैसे? बोले बड़े दो सुंदर बालक आए थे, बोल रहे थे कि आपने उनको भेजा है बहुत सारी सामग्री, तो देखो कितना सब सामान लेकर ला करके भेजा है, और मैंने उनको बहुत बोला, तो बोले कि नहीं वो तुम्हारे पति ने खा लिया, तुम भी खा लो, इसलिए मैंने खाना बैठी भाई, मैं नहीं खाने वाली थी, लेकिन तो वो बोले तुम्हारे पति ने तो ऑलरेडी खा लिया है और तुम खा सकती हो। तो लेकिन उसको मारा क्यों आपने? इतने सुंदर सुंदर बालकों को मारते है वाला कोई, और वो भी ऐसे बालक जो बेचारे आपका सेवा कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, उनको मारा क्यों? और पति ने कहा कि दो बालक आए गए, कैसे थे दिखने में? एक सांवला था, एक गोरा था, एक उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और बड़े करली है, बड़ा सुंदर लग रहा था, लेकिन बेचारे को मारा है, किसने पीटा है? बोले आपने पीटा, ऐसा क्यों किया? तो बोले काला था, एक गोरा था, सांवला था, पीटा है उसको। तुरंत दौड़ करके गए भगवत गीता, जहाँ पर वो जो ब्लेड लगाया था गीता, तो वहां पर जो करोमी था वो वहां में हम हो गया। फिर से तब समझ गए, ओ अरे तुम तो जगन्नाथ जी दर्शन किया, जगन्नाथ बलदेव जी का दर्शन किया, तुरंत धन्यवाद प्रणाम कर दिया। तो तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम्हें जगन्नाथ जी का दर्शन किया, और जगन्नाथ स्वयं आए थे। तो ये भगवान प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए थे अर्जुन आचार्य का कथा, तो ये भगवान स्वयं पूरा करते सारी व्यवस्था। श्रीवास ठाकुर को एक बार चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तुम निरंतर भगवान की सेवा करते रहते हो, तुम्हारा व्यवस्था कैसे होता है? तो तीन ताली बजाई। चैतन्य महाप्रभु का ये तीन ताली का क्या रहस्य है? तो बोले एक बार एक दिन उपवास करूंगा, दूसरे दिन उपवास करूंगा, तीसरे दिन अगर उपवास करूंगा, तीन दिन के बाद भी अगर भगवान ने मेरी सहायता नहीं की तो गंगा में जाकर डूब मरूंगा। तो फिर भगवान को सहायता करनी पड़ती है। तो ये अस्तित्व श्रद्धा भगवान की होती है। तो इस तरह से भगवान हमेशा भक्तों की सहायता करते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, दुख में थे, कष्ट में थे, तो भगवान बोलता मैं उठा लूंगा गोवर्धन पर्वत। तो ये भगवान का तरीका है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये पर्वत जिसको हम रोज देखते हैं इसको भगवान उठाएंगे, कभी सोचा भी नहीं था ये, है ना। अभी आप इधर बैठे हो, आपको अचानक से भगवान सामने वाला बिल्डिंग उठा ले, है ना, आपने सोचा भी नहीं था। ऐसे रोज गोवर्धन को देखते थे, कभी देखा? पांडव के केस में भी ऐसा था, अर्जुन दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था, दुर्वासा बोले कि मैं तो खाने आऊंगा और युधिष्ठिर का द्रौपदी व्यवस्था करो। द्रौपदी ने कहा अब तो अक्षय पत्र जो मेरे पास था उसमें सब खा लिया, कुछ है नहीं, बचा नहीं, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। बोले तो श्राप दे देंगे, तो अब क्या करे? तो द्रौपदी कृष्ण को पुकारे, कृष्ण आए उधर, कृष्ण आए बोले द्रौपदी बहुत भूख लगती, तो बोले एक तो समस्या ऑलरेडी प्रॉब्लम थी और ये और नई समस्या लेके आए। बोले मुझे भूख लगी है, खाने को दो। बोले हम आपको हेल्प के लिए बुला रहे हैं, आप तो समस्या क्रिएट करते जा रहे हो, ये कैसे तरीका है आपका? कृष्णा बोले और कुछ नहीं सुनना है मुझे, मैं यह कहती तुम्हारी कंप्लेन सुनने नहीं आया, मुझे भूख लगी, खाने आया हूँ, खाने को दो। तो बोले खाने के लिए कुछ नहीं। बोले कुछ तो होगा, झूठ मत बोलो, कुछ होगा देखो। बोले कुछ नहीं है, मुझे पता है, मैं कुकिंग किया। बोले नहीं देखो, ठीक है देखते देखते देखा तो कुछ एक टुकट दाना मिल गया। हाँ बोले वही चलेगा, लो वही। उससे कहा हाँ, द्रौपदी समझ गई वो एक दाना क्यों मांग रहे। जैसे ही मुंह में डाल दिया, दुर्वासा ने बोले कि अब सब पेट भर गया है, ठकार आ गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब वहां पर जाएंगे और भोजन का अनादर करेंगे तो युधिष्ठिर दुखी हो जाएगा, वैष्णव राजा है, भागो इधर से, कोई देखा भी नहीं। भीम बोले मैं ढूंढ के आता हूँ, कृष्ण बोले कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बोले वो आएगा, भूखा होगा तो आएगा इधर, डोंट वरी, तो सब चले गए। तो इस तरह से कृष्ण जब भी आप भगवान की सेवा में जुड़ते हो, तो जैसे माता होती है, माता माता की गोद में बच्चा बैठता है तो क्या बच्चे का भार लगता है माता को? माता है, आप लोग को बताओ, आपको बताओ, छोटे बच्चे को आप अपनी गोद में बिठाते हो तो क्या उसका भार लगता है आपको? अपने बच्चे का भार नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इतना प्रेम है उसके प्रति, इसलिए उसका भार नहीं लगता। अगर टट्टी पेशाब भी करता है बच्चा गोद में, फिर भी उसका कोई बर्डन माँ को नहीं लगता। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगता, आइडियली नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसका प्रेम है। इस तरह से भगवान अपने भक्तों की जो अगर सहायता करते हैं उसमें भगवान कोई बर्डन नहीं है, वो प्रेम के वश कर रहे हैं, उनको कोई बर्डन नहीं है इसमें, आउट ऑफ लव ओनली। लेकिन कैसे भक्त? नित्य युक्ता उपासते सततम अनन्य चिंतयन्तो माम तेषां नित्याभियुक्ता नाम। ऐसे लोग, ऐसे भक्त, तो फिर देखो काम कैसे, गाड़ी कैसे चलती है आपकी, कैसे बनना पड़ेगा? निरंतर नित्य युक्त उपासते। सो नाउ देवताओं के विषय फिर से भगवान बताते, पढ़िए फर्दर। आई एम सॉरी, आई एम गोइंग लिटिल फास्ट, बट आई हैव टू फिनिश इट।
हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी पूजा करते हैं, किंतु यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं।
अंडर द टेबल वाला सिस्टम है, ब्राइब देना अंडर द टेबल। हमेशा सामने सरकारी कर्मचारी के पास जाते हो, काम करवा दो, बोले ये कर दो, नहीं करता, बोले ले चाय पानी। जैसे ही चाय पानी देते हो तो काम फटाफट होने लगता है, राइट। तो इस तरह से ये लोग, उनको कुछ लाभ चाहिए तो लाभ मिलता नहीं है तो देवताओं के पास चले जाते हैं। वो मिनिस्टर होते हैं छोटे छोटे, देवताओं के पास चले जाते हैं, बोले मैं तुम्हें नारियल लगाऊंगा, परिक्रमा तुम्हारा पैदल चल के आऊंगा, और ये करूंगा, वो अनुष्ठान करूंगा, ये करूंगा, अब मेरा काम कर दो। क्यों? बोले इतना सब तो दिया, ब्राइब तो दिया मैंने, इतना लांच रिश्वत तो दिया तुम्हें, अब तो कर दो। हाँ, ये अंडर द टेबल है। अविधि पूर्वकम बोलते हैं इसको, अविधि पूर्वकम, दिस इज नॉट द राइट वे। इस तरह से देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति खुद को, अपने आप को चीट करते हैं। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, वृक्ष के मूल में पानी डालने के बदले ये लोग वृक्ष के पत्ते पे पानी डालते हैं। अब पत्ते पे कितना भी पानी डालो क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। जैसे पेट में भोजन लेना होता है, अभी ये समझ लो कि आंख में कोई प्रॉब्लम है या मेरी उंगली वीक हो गई है, तो अगर मैं दूध डालता रहता हूँ उंगली के ऊपर, बोले कोई आके देखे, बोले क्या करो प्रभु जी, आप उंगली के ऊपर दूध क्यों डालते रहते? बोले कमजोर हो गई है। तो ये कोई तरीका है दूध डाल के? उसको तो दूध पीना पड़ता है ना, उसको आपको पेट में डालना पड़ता है भोजन। सारे अंग एक बार हड़ताल पे चले गए, स्ट्राइक पे चले, बोले ये सारा खाना इधर ही आता है। बोले हम लोग क्या ऐसे ही बैठे रहते? हम तो कोई देता ही नहीं खाना, सब स्ट्राइक कर लिया। तो पेट भरा तो ठीक है, तुम स्ट्राइक करो, देखते हैं क्या होता है। सब स्ट्राइक हो गया, सबका कमजोर हो गया, खाना पीना बंद हो गया। बोला पैर बोले मैं जाऊंगा ही नहीं, हाथ बोले मैं खिलाऊंगा ही नहीं, तो खाएगा कैसे? तो सब लोग स्ट्राइक, तो सब कमजोर हो गया। कमजोर होने के बाद में सब बोले कि नहीं नहीं भाई, पेट को खाना दो, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो पेट को सबको खाना खिला दे। तो देवताओं को जो उपासना करने वाले जो लोग है वो इस प्रकार के लोग होते हैं ना। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद टोक्यो में लेक्चर दे रहे थे, तो एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को पूछा कि आपने इंद्र को कभी देखा है, आप इंद्र से कभी मिले हो? तो प्रभुपाद टोक्यो में थे, प्रभुपाद ने कहा कि मुझे इंद्र को मिलने की क्या आवश्यकता है, मैं क्यों इंद्र को मिलूं, आई डोंट बॉदर, मुझे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर प्रभुपाद ने कहा कि मैं अगर जापान के जो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट जो होते हैं जापान के, अगर मैं उसको जानता हूं तो मैं छोटे मोटे सरकारी कर्मचारी के पास क्यों जाऊंगा? अगर मैं कृष्ण को डायरेक्ट मानता हूं, सेवा करता हूं, तो ये इंद्रचंद्र के पास क्यों जाऊंगा? कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, रिस्पेक्ट पूरा है उसको, ठीक है, फुल रिस्पेक्ट, लेकिन जाऊंगा क्यों उसके पास? मुझे उसका काम ही नहीं पड़ता, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है कृष्ण के साथ, तो इधर उधर क्यों भागना है? सो इसलिए देवताओं की पूजा करने भक्त जो होता है वो देवताओं की पूजा में फंसते नहीं है, उसको पता है कि सारा ऊपर से आता है। तो ऐसे लोग का क्या होता है? नेक्स्ट टेक्स्ट नंबर 24।
मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं।
हाँ, तो ऐसे लोग जो होते हैं, बहुत सारे वेदों को फॉलो करना आते हैं, डेमिगॉड को वर्शिप करना आते हैं, वो भगवान की महिमा को नहीं समझते, इसलिए नीचे गिरते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मनम, फिर से उनका जन्म होता है, फिर से उनका अधोगति होता है। फिर कंट्रास्ट दिया गया है नेक्स्ट 24-25 में दोनों के बीच का, पढ़िए।
जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं।
हाँ, इतना कंफ्यूजन करने की भगवान बोले कोई आवश्यकता नहीं, सिंपल लॉजिक है, ये प्रिंसिपल है, जो जिसकी पूजा करेगा वो उसके पास जाएगा। ऐसा नहीं सर्व सब भूमि गोपाल की है, सर्व धर्म क्या है केशव प्रति गच्छति, सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति, सारी नदियां जैसे समुद्र में मिलती है, वैसे किसी भी देवता को पूजा करो या तो मत, तो जिसको जिसकी पूजा करनी है तो कृष्ण के पास ही जाने वाला है, ऐसा नहीं होता है। अभी भी पूर्व काम, आप जिस ट्रेन में किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ, स्टेशन में जाकर आप दिल्ली जाओगे, ऐसा किसने बोला? आप किसी भी ट्रेन में बैठ गए, बोले दिल्ली जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जिस आप भूतों की पूजा करोगे तो भूतों के पास जाओगे, पितरों की पूजा करोगे तो पुत्रों के पास जाओगे, देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के पास जाओगे, लाइट की पूजा करोगे तो कीड़ा बनोगे लाइट के पास, पर मेरे भक्त होंगे और मेरे पास आएंगे। भगवान स्पष्ट बता, यहां देवता देवान पितुम्या पितुन बता। ओके, नेक्स्ट श्लोक में भगवान,
जो कोई मनुष्य प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मने पर्ण फूल फल के जल अर्पण करे तो हूँ तेना स्वीकार करूँ।
दिस इज द साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। पत्रम पुष्पम फलम तो अयम जो मैं भक्तिया अपने थे। देवताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे यज्ञ करने पड़ते हैं, घी लाना पड़ता है, ब्राह्मण लाना पड़ता है, दान देना पड़ता है, आहुति देनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, और ये सब कुछ नहीं हो मैं इसमें से एक चीज भी रह गया तो सारा कार्य विफल, भोग कर्मणा खत्म, सब विफल हो गया। लेकिन भगवान के भक्त के लिए कुछ नहीं। पत्रम, पत्र का अर्थ होता है एक पत्ता, दो पत्ते भी नहीं चाहिए, पत्रम एक ही पत्ता। पत्रम पुष्पम, पुष्पम बहुत सारे आप पूरा बाजार भर के फूल नहीं चाहिए, ये फूल भी काफी है। पत्रम पुष्पम फलम तो ऐसा भी भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि फल भी लाओ तो वो कोई और चीज दिया गया न्यूजीलैंड का या ऑस्ट्रेलिया से या कहीं अमेरिका से, ऐसा कोई फूल होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला भगवान। फिर पत्रम पुष्पम फलम, फलम तो बोले कोई न्यूजीलैंड का वो कीवी आता है, वो क्या ऐसा इंटरनेशनल फ्रूट ले गया, ऐसा वाला कोई फ्रूट नहीं कहा, कोई भी फूल कोई भी फल। वाटर पदम तोयम जल, जल को बोले कौन सा बोले आपका है, बिस्लरी का पानी होना चाहिए बोतल, ऐसा नहीं कहा भगवान। नलके का पानी भी चलेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति के माध्यम से देता है उसकी भक्ति को, तदहम भक्ति उपरतम, दो बार भक्त्या शब्द आता है, तो उसकी भक्ति को मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे पत्र की आवश्यकता नहीं है, फूल की आवश्यकता नहीं है, भगवान 56 भोग के भूखे नहीं है, भगवान को भूख की आवश्यकता नहीं है, भोजन चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति को भगवान मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, गिव मी दैट गिव मी दैट। देवताओं के पास ये विचार है ही नहीं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, लेकिन भगवान आपकी भक्ति को मांगते, आपकी भावना मांगते, पत्रम पुष्पम फलम से। सो सिंपल, इसमें कौन सी मुश्किल बात है, वो सारी प्रोसेस भक्ति में है। जैसा गार्डन बनाने वाला उसकी भी भक्ति, वो भी भक्ति, उसकी भक्ति भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। पौधे में पानी डालने वाले की भावना भी भगवान ग्रहण करते हैं। फिर फूल काटने वाला है उसकी भी भावना भगवान ग्रहण करते हैं। फिर फूल को भगवान, माला बनाने वाला उसकी भी भगवान ग्रहण करते हैं, और उसको भगवान को अर्पण करने वाला उसकी, सारे जितने भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं सबकी भक्ति उपरतम, सबकी भक्ति को भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं। पत्र पुष्पम फलम तो एम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामी प्रयतात्मना। तो और उसको कुछ नहीं, भगवान एक ही चीज मांगते हैं, भक्ति। ये भक्ति की, भक्ति यहां से शुरू होती है, भावना से, हृदय से, प्रेम से, ये शुद्ध रूप से भक्ति है। स्टार्टिंग में ही भक्ति होती है। निष्काम कर्म योग में क्या आता है, आगे वाले श्लोक में आता है निष्काम कर्म योग कि पहले कर्म फिर भक्ति, लेकिन यहाँ पर भक्ति ही शुरुआत होती है। तो इस तरह से भक्ति प्रभुपाद इसके विषय में बहुत सारे एग्जांपल दिए, मैं आपको समराइज करता हूँ। जैसे गंगा हो, गंगा के पास अगर आप जाते हो तो गंगा की पूजा कैसे की जाती है, गंगा के जल को गंगा में अर्पण करने से गंगा की पूजा होती है। इस तरह से आप पत्रम पुष्पम फलम तो इत्यादि बहुत सारी चीज है वो भगवान ने दिया है, तो उनकी ही संपत्ति को, जैसे पिता होते हैं वो जनरली बच्चों को खाना पिता देता है, सब कुछ प्रोवाइड पिता करता है, लेकिन पिता को पास छोटा बच्चा जाकर कहता है कि पिताजी मुझे थोड़ा रुपया दो ना, 100 का नोट दो ना। पिता बोलेगा क्यों चाहिए 100 का नोट, तो बोले कि नहीं आप दो ना मुझे काम है। पिताजी जानता है बच्चे को, और ठीक है लो 100 रुपए। फिर वो जाता है 100 रुपए का कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके आता है पिता के, और फिर लाके पिताजी आपके लिए। भगवान ओ पिताजी बोलते अच्छा मेरे लिए गिफ्ट लेके आया, और पिता एक्चुअली बहुत खुश होता है, पिता एक्चुअली बहुत खुश होता है, हालांकि उसको पता है बोले इसके पास तो पैसा था नहीं, पैसा तो मैं ही देता हूँ उसको, बुद्धि भी उसको मैंने दिया, सब कुछ मैंने दिया, सब कुछ भगवान को पता है, लेकिन वो जो ला के देता है ना, मैंने आपके लिए बनाया, मैंने आपको दिया, तो वो प्रेम भगवान चाहते हैं, दैट लव कृष्ण वॉन्ट्स। तो गंगा की पूजा जैसे करते हैं वैसे भगवान की पूजा हम करते हैं, लेकिन फिर वो प्रेम जाते, क्योंकि गंगा को पानी की कमी नहीं है, इस तरह से भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन भगवान भावना को देखते हैं। जैसे सुदामा ब्राह्मण के पास कुछ था नहीं, वो कुछ चिप राइस पोहा, चिवड़ा पोहा जो भी बोलते हो, तो वही उनके पास था चिवड़ा, चिप राइस। तो वो जाके उनके पास कुछ था नहीं, लेकिन वो भावना देखी, इतना भगवान प्रसन्न हो गए कि उनकी आंखों में से पानी बहने लगा सुदामा को देखकर, और सुदामा को अपने आसन रुक्मिणी के आसन पर बिठा दिया और खुद अपने उनके चरणों में बैठ करके उनकी पूजा करने लगे। और भगवान ने कहा कि इससे महान और कोई मेरा भक्त नहीं है, इस तरह से भगवान उसका गुणगान गाने लगे। तो उसकी भावना को भगवान देखते हैं ना। विदुर के घर पे, दुर्योधन के घर पे 56 भोग नहीं खाया, लेकिन विदुर के घर पे साग खाया, सिंपल रोटी सब्जी, क्यों? प्रेम के वश। तो भगवान इस चीज को देखते हैं। फिर श्रीधर के टूटे हुए लोटे में से चैतन्य महाप्रभु पानी पीते थे। चैतन्य महाप्रभु बोले आपके लिए नहीं है ये टूटा हुआ लोटा आपके लिए नहीं है, नहीं महाप्रभु बोले ये प्रेम के वश। भगवान ये सनातन गोस्वामी, दिस वन ऑफ द वेरी फेमस, आप थोड़ा आगे 10-10 मिनट थोड़ा एक्सटेंड करें आज चलेगा, आई वांट टू फिनिश द चैप्टर। सो मदन मोहन का एक बहुत ही फेमस जो स्टेटमेंट है लॉस एंजलस वाला, तो शायद आपने बहुत बार वीडियो में देखा होगा, सुना होगा 1969 में। तो वो प्रभुपाद जो कहते हैं ना, प्रभुपाद रोने लगते हैं बोलते वेरी फेमस। तो मदन मोहन भगवान का विग्रह जो है उसको सनातन गोस्वामी पूजा करते थे, तो सनातन बूढ़े हो गए तो रोटी उनके लिए लेके जाते थे, और रोटी सूखी रोटी होती थी, और एक रोटी होती थी उसको दो भाग करते थे, सुबह देते थे और दूसरा शाम को दूसरा देते, और शाम को तो सूख जाता था, उसमें नमक भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं, सिंपल रोटी। तो भगवान एक मदन मोहन एक बार बोले सनातन को कि शाम को रात को शाम को दिया सूखा रोटी। भगवान बोले कि मदन मोहन सनातन कम से कम नमक तो दे साथ में, इसको खाऊं कैसे मैं, इतना सूखा रोटी मैं खाऊं कैसे, थोड़ा नमक तो दे साथ में खाने के लिए। तो मतलब सनातन गोस्वामी ने कहा प्रभु मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं भिक्षा मांग के दूर दूर तक जा नहीं सकता, मेरे पास जो कुछ है वो सब मैं आपको दे रहा हूँ। और बहुत विनम्र भाव से भगवान ने कहा, सनातन गोस्वामी ने कहा। तो वो प्रभुपाद इस चीज को प्रभुपाद खुद बताते हैं, प्रभुपाद सेज दैट कि दिस इज रियल थिंग भक्तिया, द रियल थिंग इज योर डिवोशन, कृष्ण काइंडली टेक इट, आई हैव नो क्वालिफिकेशन, आई एम मोस्ट फॉलन रोटन, बट आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू, मैं आपके लिए लेके आया हूं, आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू, प्लीज टेक इट, दिस विल बी एक्सेप्टेड, डोंट बी पफ्ड अप, ऑलवेज बी केयरफुल, यू आर डीलिंग विथ कृष्ण, दिस इज माई रिक्वेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जो प्रभुपाद ने लेक्चर में कहा था कि प्रभु हे प्रभु मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपके देने के योग्य, फिर भी मैं आपको ये कुछ जो कुछ मेरे पास है वो मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ, कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए। ये भावना भगवान चाहते हैं, आज 56 भोग दो उनको नहीं चाहिए, ये भावना चाहते हैं भगवान, प्रेम चाहते, प्रेम और कुछ नहीं चाहते। सो एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को कहा कि आप मूर्ति पूजा को विश्वास करते हो, आर्य समाज का, बोले आप मूर्ति पूजा को विश्वास करते हो, बोले नहीं ऐसा नहीं होता है। तो प्रभुपाद ने कहा तुम भगवान को भोग लगा तो भगवान खाते, तो प्रभुपाद ने कहा खाते है भगवान, भगवत गीता बोले, तो बोले कि भगवान नहीं खाते। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम कहते हो कि भगवान नहीं खाते और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भगवान खाते हैं, तो मुझे किसको मानने का, तुम्हें मानने का, तुम जैसे किसी लोफर को मानने का, या फिर भगवान को मानने का, किसको मानने का? भगवान ने कहा, प्रभुपाद ने कहा कि चलो मैं मूर्ख हूं लेकिन मैं थर्ड पर्सन हूं, तुम भी थर्ड पर्सन हो, तुम एक साधारण मनुष्य हो, तुम्हारी और क्या पोजीशन है, तुम हो भी क्या, तो मैं किसको मानू, तुम्हें मानू या भगवान को मानू? भगवान बोलते मैं खाता हूं, तुम बोलते मैं नहीं खाता, किसको मानना? सो इस तरह से प्रभुपाद ने ये उदाहरण दिया। सो नाउ आगे के जितने भी श्लोक एक साथ ही पढ़ लीजिए 34 तक, देन मैं उसको समराइज करता हूँ।
हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वो भक्ति में मत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य, व्यापारी या शूद्र समय क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजस्वों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी परमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, मेरे अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मेरे भक्तों, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझमें पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे।
ओके, सो आगे वाला जो श्लोक है टेक्स्ट नंबर 27 में भगवान कहते हैं, यत क्रोश की दर्शनासी यज्ञोश की दासके, जो कुछ भी खाते हो, तप करते हो, दान करते हो, जो कुछ भी करते हो सब मुझे अर्पण करके करो। भगवान ये स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो ये है निष्काम कर्म योग, जिसमें भक्ति कर्म करने के पश्चात शुरू होती है, उसी इसको निष्काम कर्म योग बोला जाता है। मीन्स यत करोशी, जो कर लो अभी, कर जैसे भोग लगाया तो रसोई तो बन गया, भोग लग गया, वाह आज मैं समोसा खाऊंगा, आज ये हो गया, वो बन गया। मोर वाटर। लेकिन अब भोजन खाने वाला था, मैं समोसा खाने वाला, फिर बाद में आया, इसका तो कर्म फल लगता है, इसमें तो बंधन हो जाएगा, तो अब क्या करें। यत्कोशी ददासी यज्ञोशी, जो कुछ खाते हो तब कर तो सब मुझे अर्पण करके करो। हाँ ठीक है ठीक है, थाली में लगाओ, तुलसी पत्र लगाओ, टिंग टिंग टिंग, प्रभु प्लीज इसका स्वीकार करो। भोग लगा दिया, अब प्रसाद हो गया, अब खा सकते। तो क्या हुआ उस समय, भावना क्या थी कि पहले तो बनाया खुद के लिए, बाद में याद आया कि तो भगवान को भोग लगाना पड़ता है, तो भोग लगा, इसको निष्काम करेंगे। और जो भक्त होता है वो कैसे कुकिंग करता है, वो तो समोसा आलू काटता है तो काटते समय भी भगवान का नाम लेता है, जब करता है भगवान का चिंतन करता है, समोसा बनाता है तभी भी भगवान का चिंतन करता है, और वो शुरू से ही चिंतन करता है फिर भगवान को भोग लगता है। तो ये दो विशेष अंतर है इन दोनों के बीच में। और ऐसे लोग जो लोग होते हैं उनको क्या प्राप्त होता है, उनको विशेष मुक्ति प्राप्त होती है, स्पेशल मुक्ति। स्पेशल मुक्ति क्यों कहा गया है, क्योंकि वो लोग मेरे साथ मेरे धाम में रह सकते हैं, इंटीमेट बन सकते हैं। भक्त लोग कैसे लोग, जो पत्रम पुष्पम या जो भगवान के अनन्य भक्त है, उन लोग ऐसे लोग स्पेशल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या फिर भगवान को समान नहीं होना चाहिए, तो भगवान ऐसा कैसे चलेगा, इनको स्पेशल मुक्ति दिया तो बाकी सब लोगों ने क्या किया, तो समान होना चाहिए। भगवान को बोला हाँ मैं समान हूँ, सबके साथ इक्वल हूँ, सर्वभूत, मैं सबके प्रति समान हूँ, समोहम पहले लेंगे, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽसि न प्रिय, ना मैं किसी को द्वेष करता हूँ, ना किसी पर पक्षपात करता हूँ, इक्वल, एकदम इक्वल, कोई ऐसा नहीं, ये एकदम भगवान एकदम इक्वल है, इक्वल रेन की भांति इक्वल है। वर्षा सब जगह होती है कि नहीं? इक्वल। आप कहीं पर भी आप पाप करने वाला वहां पर भी वर्षा होती है, पुण्य कर्म वाला उसको भी वर्षा होती है, सब जगह वर्षा होती है, इक्वल है भगवान। लेकिन एक व्यक्ति ने अपनी खेत में जमीन में गुलाब का फूल का बीज डाला था और एक व्यक्ति ने कैक्टस का बीज डाला था, तो भगवान का रेन तो एक समान रूप से काम किया, पानी तो एक एक समान हुआ, लेकिन उसके खेत में गुलाब का पौधा उगा, गुलाब का फूल उगा और जिसमें खुशबू आ रही है और उसके खेत में कांटे उगे। अब बताओ भगवान कहीं इक्वल है कि नहीं है? भगवान ने कोई गलती किया क्या? भगवान ने कोई गलती नहीं किया, भगवान ने सबको समान अवसर दिया है। लेकिन ये तू भजंती तुम आम भक्तिया मई ते तेषु चाहते हम, भगवान कहते हैं कि किंतु जो व्यक्ति, यू नो देयर इज अ बिग बट, यू नो बिग बट, यहां तो स्टैंप आगे वाले पहले लाइन में क्या था, परमात्मा सैंक्शन सैंक्शन, इधर आया स्टैंप लगाया आगे, इधर आपकी दूसरा कार्य इच्छा है स्टैंप लगाया आगे। परमात्मा दयालु नहीं है, परमात्मा कृपा नहीं करता है, कृष्ण ही कृपा कर सकता है, परमात्मा कृपा नहीं करेगा क्योंकि उनका तो स्टैंप मारने का काम है, स्टैंप ओके एग्री एग्री अप्रूव अप्रूव, लेकिन भगवान कृपा करते हैं। इसलिए कृष्ण हमें सब अवस्थाओं में हमारी व्यवस्था करते हैं, हमारे हेल्प करते हैं, यू नो दैट इज कृष्ण मई जे सुचापे हम सब जगह पर तत्ते अनुकंपा सुमिक्षमाण, हे प्रभु जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है वो आपकी कृपा के कारण प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है अच्छा बुरा जो कुछ भी मिल रहा है वो मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, लेकिन आप बड़े कृपालु हो कि आप उस सारे कर्मों को कम करके, अगर मेरा एक स्टेप मैं लेता हूँ तो आप सामने 100 स्टेप लेने को तैयार हो, हे कृष्ण आप इतने दयालु हो, यू आर सो मर्सीफुल, आई डोंट डू एनीथिंग, आई एक्चुअली मैं तो उस बच्चे की तरह हूँ कि जो बार बार आपको कष्ट दे रहा हूँ, आप मुझे टॉयलेट करते रहते हो, नर्सिंग दे हो और टॉयलेट करते रहते हैं, हमें हम इतनी सारी गलतियां करते टॉयलेट करते, फिर भी आपका एक कोई अच्छा गुण मिल गया उसको पकड़ करके पूरा नौका आपको बहुत सागर से पार करा, एक अच्छा गुण मिल गया बस उसे पूरा बहुत सागर आपको पार करा देते भगवान। तो ये भगवान का स्पेशल, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट बोल दिया ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तेव विदान, जो मेरा चिंतन निरंतर करेगा मैं भी उसका निरंतर चिंतन करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अगर वो छोटी मोटी गलती भी करे फिर भी उसको महात्मा साधु मानना चाहिए, साधु रे वो मंतव्य, ऐसा व्यक्ति अगर कोई गलती भी करेगा तो भी उसको साधु मानना चाहिए। अरे ऐसा क्यों, अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य बात, ऐसे दुराचारी व्यक्ति को साधु कैसे मान सकते हैं? अनन्य क्योंकि वो भजते माम अनन्य भाग, वो निरंतर मेरा भजन कर रहा है, साधु रे वो सब, लेकिन वो तो तीन गिर गया है दुराचारी है, उसका उसका खाया उसका भोग लगेगा, आप खाओगे? कृष्ण को कोई पूछेगा, कृष्ण बोलते हैं हाँ मैं खाऊंगा, क्यों खाऊंगा? क्योंकि वो निरंतर मेरा, वो उसका एक सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है, वो डिटर्मिनेशन से मेरी सेवा, भजस्व माम अभी चेत सुदुराचारो बजत इमाम अनन्य भाव, निरंतर पूजा, गलती करता है तो उसका सबसे बड़ा क्वालिटी कि वो अपने आप की इस गिल्ट जो है वो गलती है उसको बार बार कोसता रहता है कि मैं इतना दुष्ट हूँ, इतना निकम्मा हूँ, इतना यूजलेस हूँ, कि भगवान का इतना कृपा होने के पश्चात भी दुर्दैवम इदृशम इहा जनिना, मैं ऐसी गलतियां कर देता हूँ और मुझे कोई आकर्षण नहीं भगवान के चरणों में, वो बार बार कोसता रहता है ऐसी गलती क्यों की मैंने, क्यों की ऐसी, बार बार कोसता है आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा ऐसा, तो तुरंत वो तो नेक्स्ट मोमेंट शुरू कर देता है, क्षणिक पतन होता है उसका, लेकिन वो नेक्स्ट दूसरी मोमेंट से अनन्य भाग भजते भाग, तो भगवान इस क्वालिटी को चेक करते हैं, भगवान उस क्वालिटी को पकड़ लेते हैं, इसलिए बोलते साधु रे वो मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो, सम्यक व्यवस्थित हो, सम्यक व्यवस्थित हो इसका अर्थ है कि उसका मार्ग जो है वो परफेक्ट है, सम्यक व्यवस्थित हो ऐसा, वो मेरे पास ही आ रहा है, वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी धर्मात्मा बनने वाला है, ये टेंस, ऐसा नहीं भविष्य में बनेगा कभी, ऐसा नहीं, क्षिप्रम तुरंत, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सत्स्वच्छान्ति निगच्छति, निगच्छति शब्द का अर्थ होता है कि उसको मिलती है शाश्वत शांति, भविष्यवाणी नहीं बताई है भगवान ने, शाश्वत शांति उसको प्राप्त होती है, शाश्वत शांति निगच्छति। कौनते प्रति आने ही है कौनते, तो अर्जुन ने जब इतना प्रश्न पूछे, जब भगवान ने ऐसा बताया तो अर्जुन को डाउट होने लगा, तो अर्जुन ने पूछा कि ऐसा, तो भगवान लाल लाल आंख से बोलने लगे, छाती पीटने लगे, भगवान ने बताया कौन ते प्रति आने ही नमें भक्ता अपना शरीर, आवाज ऊंची हो गई भगवान की, जोर से बोला ऐसे, हे कौन ते, नगाड़े ले लो, डंडी ले लो, जाओ सब बीच सड़क पर और ढंडेरा पीटो, क्या मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्तों में कुछ नहीं होने दूंगा, कौन ते प्रति जान है नमें भक्ता अपना शरीर। तो ये भगवान का ये स्पेशल भक्तों का स्पेशल क्वालिटी, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप मिस यूज करो, है ना, भगवान बोल रहा है ऐसा, भजते मामने बाग, दुराचारी व्यक्ति भजते अनन्य भाव से भजन करेगा तो वो साधु मानेगा, तो मैं क्या करूंगा, सोलह माला जप करूंगा, फिर थोड़ा बहुत पाप कर लूंगा, फिर तुरंत वापिस सोलह माला शुरू कर दूंगा, तो अगर मिस यूज करोगे तो नौवां अपराध है भगवान के नाम के जप के बल पर पाप करना, तो इस तरह से ये महान पाप माना जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो मेनी स्टोरीज बट आई एम लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम। भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा किया था मैं तुम्हें हथियार उठवा के रहूंगा, और भगवान ने प्रतिज्ञा किया था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अभी एक ही देखो, एक ही लीला में दुर्योधन जाके भीष्म को कंप्लेन किया, बोले तुम सठिया गया, बुढ़ा हो गया, कोई काम का नहीं, पांडव का सारा पक्ष करता है, तुम्हें तो कोई युद्ध करने का आता ही नहीं है, ऐसा सब बोलने लगा। और भीष्म बोले, बोला ऐसा बोले, पांडव को तो मारता नहीं है, क्या करने का, इतना बड़ा दादा है हमारा बुढ़ा, लेकिन कुछ करता तो है नहीं। तो भीष्म गुस्सा हो गया, भीष्म बोले ठीक है मेरे पास पांच बाण है, दुर्योधन को दे दिया, बोले इसको कल कल तो मैं देख लिया ना, तो कृष्ण को ये सब पता पड़ गया। कृष्ण ने अर्जुन को बोला जाओ अर्जुन दुर्योधन के शिविर में जाओ, दुर्योधन के पास जाओ। बोले क्यों जाओ उसके दुष्ट के पास क्यों जाओ, बोले वो पांच बाण अर्जुन भीष्म ने दिया उसको वापस लेकर। बोले मैं क्षत्रिय होगा उसके पास भीख मांगूंगा, बोले नहीं भीख नहीं मांगना है। तो बोले तुम्हें याद है तुमने एक बार गंधर्वों से दुर्योधन की रक्षा की थी, बोले हाँ, तो एक वरदान दिया था, क्या वरदान दिया था, हाँ, बोले जो मांगना है लाइफ में एक बार तुम कुछ मांग सकते हो मुझसे, कुछ भी दे सकता हूँ। बोले हाँ वो तो है ऐसा, बोले जाओ यही तो टाइम है, जाओ उधर पांच बाण मांग के आओ। तो अर्जुन गया, दुर्योधन बोले अरे अर्जुन तू क्या काम है तुझे, बोले तुम्हें याद है गंधर्व वाली बात, बोले हाँ पूरा याद है, बताने की क्या आवश्यकता, बोले क्या चाहिए, बोले एक बार बोला है कुछ तो देना, बोले हाँ तुम जो मांगे हो दे दूंगा, बोले तो तुम हस्तिनापुर दे, बोले नहीं हस्तिनापुर नहीं चाहिए, बोले युद्ध खत्म कर देते, बोले युद्ध खत्म भी नहीं करना, तो बोले क्या, बोले पांच बाण चाहिए, और पांच बाण दे दो। और दुर्योधन ने तुरंत निकाल करके दे दिए, और दूसरे दिन युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध किया भीष्म ने, ऐसा युद्ध किया कि भगवान गुस्सा हो गया अर्जुन के ऊपर, अरे दुष्ट अर्जुन मित्र भी है ना, तो कहा कि क्यों बार बार, मैं हजार बार तुझे बोला कि ये तेरा पिता नहीं है, तेरा दादा नहीं है, मत सोच, इसको मारना पड़ेगा, ये विघ्न, इसको मारना, तुझसे ये काम नहीं होता, मैं ये काम करता हूं। लेकिन अर्जुन पे इतना प्रहार हो रहा था कि अर्जुन की मृत्यु देख नहीं पाए वो, अगर कृष्णा इंटरफेयर नहीं करते बीच में कृष्णा, तो आज अर्जुन का वध निश्चित था, भीष्म तय करके बैठे थे। तो इतना सब भगवान देखा नहीं गया, भगवान बोले मेरी प्रतिज्ञा युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए मैं युद्ध के सारे नियम तोड़ करके हथियार ले लूंगा, हथियार ले लिया, रथ का पहिया उठा लिया, अब पहिया उठा लिया तो प्रतिज्ञा अपनी तोड़ दी, किसके लिए, अर्जुन के लिए, राइट, लेकिन अर्जुन के अकेले के लिए नहीं, भीष्म के लिए भी, तो भीष्म ने भी तो प्रतिज्ञा की थी, बोले मैं तुम्हें हथियार उठवा के रहूंगा, तो दोनों की प्रतिज्ञा का मान कर दिया, बोले मेरी प्रतिज्ञा लेने गई थी, लेने गई, तो अब दोनों में दो भक्तों की प्रतिज्ञा है, तो मेरी प्रतिज्ञा क्या महत्व है, तोड़ दी अपनी प्रतिज्ञा। इसलिए भगवान ने यहाँ पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भगवान बोले मैं नहीं कहूंगा, कौनते प्रतिज्ञा तुम बोलो अर्जुन, बोले क्यों, बोले लोग कई बार मुझ पर विश्वास नहीं करते, इससे अच्छा कि मैं तो तोड़ देता हूँ प्रतिज्ञा, तुम बोलो कौनते प्रतिज्ञा नहीं भक्ता मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। ऐसा एक जो कर्म कर दो प्रकार के दो चोर थे तीर्थ यात्रा पे गए थे, तो लेकिन वो तीर्थ यात्रा पे गए थे तो उनको चोरी की वृत्ति से मुक्ति चाहिए थी, तो रात को, लेकिन वो चोरी की आदत थी उसको बहुत साल होगी, तो दोनों रात को सो गए। तो रात दूसरा एक चोर आधी रात को उठा और सारा सामान इधर उधर इधर उधर इधर उधर कर दिया, इसका बैग इधर उसका बैग इधर और सारा इधर बैग में से निकाल करके किसी को इधर रख दिया किसी को उधर रख दिया। दूसरे दिन वो दूसरा उसका मित्र था वो उठा, उठ करके देखा अरे मेरा कपड़ा कहाँ गया, मेरा कुर्ता कहाँ गया, मेरा बनियान कहाँ गया, मेरा साबुन कहाँ गया, वो ये सब सामान इधर उधर क्यों हो गया है। तो उसके मित्र ने कहा बोले भाई क्षमा करना, बोले माफ कर दो, बोले मैं ठहरा चोर, पूरा जिंदगी चोरी किया है, अभी रात को भी मुझे चोरी करने का तड़प हुआ था लेकिन अब चोरी कर तो सकता नहीं, बोले अब तो मैं तीर्थ यात्रा पर आया हूँ, बोले कम से कम चोरी तो नहीं कर दू, कोई बात नहीं कम से कम सामान तो इधर उधर कर दू। लेकिन उसकी भावना थी, वो समझता था कि वो गलत कर रहा था, चोरी करना गलत है, तो अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहा है, इसलिए इसको साधुरेव समन्तव्य। तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान बोलते हैं वो मेरी शरण में आकर के स्थिर हो जाता है। अरे उसका क्या, माम ही पास विपाशित्य ये भी सुपाप यो न, मेरी शरण में आने वाला कोई पाप योनी व्यक्ति भी है उसको भी मैं मुक्ति दे देता हूँ। ये अमेरिका के जो हिप्पी लोग है, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, उन सबको भगवान ने यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट बता दिया पाप योनी है उसको, पापाचारी उसको भी मैं मुक्ति दे, मेरी शरण में आया। तो स्त्रिया वैश्या तथा शूद्रा, स्त्री हो वैश्य हो या शूद्र हो ते भी आंति पराम, उसको भी उसको भी परम गति प्राप्त होती है। ऐसे तो स्त्री जो होती है उनको यहाँ पर पाप योनि इसलिए कहा गया है क्योंकि भौतिक दृष्टि से कोई भी स्त्री कम बुद्धि वाली होती है, कोई भी स्त्री हो भौतिक दृष्टि से वो कम बुद्धि वाली होती है। विश्वास हो नहीं वो कर्तव्य श्रीसु राज, स्त्री पर या राजा पर कभी विश्वास नहीं करना, ऐसे चाणक्य पंडित कहा है। तो ये पाप योनि इसलिए कहा जाए क्योंकि उनका वो भले स्त्री चाहे बूढ़ी भी हो जाए लेकिन उनका मन जो होता है वो बिल्कुल एक बच्चे जैसा होता है। लेकिन एक बार यमुना माताजी ने प्रभुपाद को प्रश्न पूछा कि यहाँ पर तो कहा गया है कि स्त्री पाप योनि होती है, प्रभुपाद ने कहा कि हाँ स्त्री पाप योनि होती है, अगर आप अपने आप को स्त्री मानते हो तो आप पाप योनि हो, अगर आप अपने आप को कृष्ण का दास मानते हो भक्त मानते हो तो आप पाप योनि हो। तो ऐसा व्यक्ति किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या, तो फिर ब्राह्मणों का तो कहना ही क्या, अगर ऐसे लोग भी मेरी सब न्याय के शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इस अनित्यम असुखम अशाश्वत जगत में फिर से नहीं आते। ये सुख मटेरियल, ये मटेरियल वर्ल्ड असुखम है, अनित्यम है, ये हमेशा नहीं रहता है और ये हमेशा कष्ट देने वाला, बिल्कुल वैसा ही दुखालय अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्त से भजस्वमा, इसको प्राप्त करने मुझे भजने के बाद ऐसे अनित्य असुखम लोक में वो फिर से वापस नहीं आता। इसलिए भगवान कहा अंत में मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मामस्कुरु, मुझ में मन लगाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मन मना भव मद मेरे भक्त बनो, इस तरह से तुम नित्य मेरे परायण रह करके तुमने मेरे पास आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द की पॉइंट, तो मन मना का अर्थ होता है निरंतर भगवान में मन लगाना, ये मन मना है और भक्त बनो। तो प्रभुपाद तात्पर्य बड़ा अच्छा लिखा है लेकिन आई जस्ट रीड आई जस्ट समराइज, पढ़ते नहीं है इसको। प्रभुपाद कहते हैं कि इस भगवद गीता का ये बहुत ही प्रसिद्ध है, यह सार रूप श्लोक है। तो ये चार चीज यहाँ पर बताई है, तो एक प्रचारक भक्त को भी इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए। और हाँ, एक लेक्चर में प्रभुपाद इस बात को बताते हैं कि एसेंशियल सर्वधर्मान परित्यज्य और मनमाना भगवान भक्त, ये दोनों ही महत्वपूर्ण उपदेश है। ये कृष्ण का इच्छा है कि हम संसार में प्रचार करें, जस्ट बी कृष्ण कॉन्शियस, मनमाना कृष्ण का भक्त बनो, ये चार चीज हमें प्रचार में करना है। Then you become a preacher. It is not very difficult to become a preacher. प्रचारक बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये चार चीज बार बार रिपीट करना है, मनमाना वाला जो श्लोक उसको रिपीट करना है भगवान के लिए। एंड टू बिकम स्पिरिचुअल मास्टर, आप तब आप गुरु बन सकते हो। इट इज सिंपल, गो एंड टीच कृष्णा सेज दैट्स ऑल, यू हैव नथिंग टू मेक अप। आपको और कुछ इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, जो कृष्ण कहते हैं उसी को हमें फुलफिल करना है, दैट इज दैट। सो ये है भगवद गीता का ये वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, 9 चैप्टर राइट, बहुत सुंदर चैप्टर है। और ये चैप्टर पूरे भगवद गीता का सार माना गया है, तो वी शुड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन गिवन इन भगवद गीता चैप्टर 9। सो हियर इट एंड्स योर फर्स्ट मॉड्यूल होल चैप्टर 9, और इफ यू वांट आई कैन जस्ट समराइज द एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर। आई नो टाइम इज 22 मिनट्स मोर, बट ये पहले मॉड्यूल के लिए मैं करता हूँ, बाद में फिर आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। सो 9.2 में वृक्ष का उदाहरण है, पुष्प वृक्ष और पुष्प का। 3 में मूल वृक्ष के मूल का उदाहरण है। फिर 4 में सनशाइन का उदाहरण है। 6 में आकाश का उदाहरण है। 9 में हाईकोर्ट जज का उदाहरण है। 10 में फूल का उदाहरण है। फिर 11वां जो चैप्टर 11वां श्लोक है उसमें ऑर्डिनरी मैनेजमेंट का उदाहरण है, संचालन का उदाहरण है। फिर चैप्टर 18वें में एलिवेटर का उदाहरण, लिफ्ट का। 21 में फेरिस व्हील का उदाहरण है, टेक्स्ट नंबर 21 में, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। 23 में फिर से मूल का उदाहरण है, वृक्ष के मूल का। 29 में वर्षा का उदाहरण है, और डायमंड रिंग का उदाहरण भी प्रभुपाद यूज देते, तात्पर्य में कहते डायमंड रिंग 29 में। और 30 में चंद्र का उदाहरण है। सो दिस आर द समरी ऑफ द एग्जांपल्स गिवन इन चैप्टर 9। सो थैंक यू वेरी मच, सॉरी फॉर द डिले। हरे कृष्ण।